आगे सबक देखिए भाई, फयुफरदु अय तमीजु व इन कान अल इस्मु तामु मुसन्नन औ मजमूआ इन कान अय तमीजु जिनसन व हुवा मा यतशाबहु अजज़ाउहु व यक़ऊ मुजर्रदन अनि ताई अलल क़लील वल कसीर फला हाजत इला तस्नियतिही व जमईही كالماء والتمر والزيت والضرب بخلاف رجل وفرس. بھئی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ تمیز جو ہے ذات مذکورہ سے یا ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرتی ہے، اور وہ ابہام بھی ایسا ہو جو باعتبار وضع کے ہو. بھئی تو تمیز جو ہے وہ ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، جبکہ اگر وصف میں کوئی ابہام ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے صفت یا حال استعمال کیا جاتا ہے. اور صاحب جامی نے ایک بہترین مثال کے ذریعے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ مثلا رتلن جو ہے یہ نصف من کے لیے وضع ہے، نصف من سے جو زائد ہو اس کو بھی رتل نہیں کہتے، اور نصف من سے جو کم ہو اس کو بھی رتل نہیں کہتے. تو یہ ریتل جو ہے نصف من کے لیے وضع کیا گیا، البتہ وضع کے اعتبار سے ہی اس کی ذات میں ہی ابہام ہے، ذات کا پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز کا ریتل مراد ہے، اور نیز وضع کے اعتبار سے ہی اس کے وصف میں بھی ابہام ہے کہ کون سا ریتل مراد ہے، بغداد والا یا مکہ والا. تو دونوں چیزوں میں ابہام تھا وضع کے اعتبار سے. اب اگر ذات کے اندر جو ابہام ہے اس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ تمیز لائیں گے اور یوں کہیں گے رتلن زیتن، اور اگر وہ ابہام جو وصف کے اندر ہے آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صفت یا حال لے کر آئیں گے. اور پھر بتلایا تھا کہ ذات مذکورہ سے مراد جو ہے وہ مفرد ہے، اور ذات مقدرہ سے مراد وہ جو لفظ شیئن مقدر ہوتا ہے، جیسے طاب زید نفسن، یہ کلام اسی درجے میں ہے گویا آپ نے یوں کہا ہو طاب شیئن منصوب الى زید، کہ ایک چیز جو زید کی طرف منصوب ہے وہ اچھی ہے. تو یہاں شیئن آیا، اس شیئن کی ذات کا پتہ نہیں چل رہا تو آگے تمیز آ کر اس سے ابہام کو دور کرے گی. تو معلوم ہوا ذات مذکورہ سے مراد ہے جو مفرد سے ابہام کو دور کرے، اور ذات مقدرہ سے مراد در اصل نسبت ہے. تو تمیز کی جو قسم ثانی ہے وہ نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے، اور یہ اسی جگہ آئے گی جہاں پر نسبت پائی جائے، اور نسبت جملے میں بھی آتی ہے، شبہ جملہ میں بھی آتی ہے، اور اضافت کے اندر بھی آتی ہے. تو لہذا یہ جو دوسری قسم ہے یہ نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے، اور پہلی قسم جو ہے وہ ذات مذکورہ سے یعنی مفرد سے ابہام کو دور کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں ایک اشکال ہوا تھا، اشکال یہ کہ متن کی عبارت آئی فالاول عن مفرد مقدار غالبا، اور یہ عن مفرد کو صاحب جامی نے بتلایا کہ اس کا متعلق یرفعہ محذوف ہے، اور یرفعہ کی ہا ضمیر ابہام کو راجے ہے. تو گویا کلام یوں بن گیا فالاول یرفع الابہام عن مفرد مقدار غالبا، کہ تمیز کی جو پہلی قسم ہے وہ ابہام کو دور کرتی ہے مفرد مقدار سے غالبا. تو اس پر اشکال ہوا کہ تمیز جو ہے مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے غالبا، یعنی اس کے اکثر مادوں میں. تو اس پر اشکال ہوا کہ معلوم ہوا بعض مادے اس مفرد مقدار کے ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر تمیز تو آتی ہے لیکن وہ ابہام کو دور نہیں کرتی. یہ تو آپ کی باتوں میں تضاد آ گیا، آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ تمیز رفع ابہام کرتی ہے، اور مفرد مقدار کے بعض مادوں میں معلوم ہوا وہ رفع ابہام نہیں کر رہی، تمیز تو آ رہی ہے لیکن رفع ابہام نہیں کر رہی. تو جواب دیا تھا صاحب جامی نے، صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ بھائی یہ جو غالباً قید آئی اس کو آپ مفرد مقدار کے لیے قید نہ بنائیں، بلکہ اس کو آپ مفرد کے لیے قید بنائیں. یعنی یوں کہو کہ یہ جو مفرد ہے اس کے اندر بھی رفع ابہام ہوتا ہے، اور مفرد مقدار کے اندر بھی رفع बल्कि यूं कहो पहले तकसीम कर लें कि देखो ये जो मुफरद मिकदार से तमीज इबहाम को दूर करती है ये दो किस्म पर हैं, ये मुफरद कभी ये मिकदार होंगे और कभी गैर मिकदार। तो मिकदार ये मुफरद की एक किस्म और गैर मिकदार ये मुफरद की दूसरी किस्म। और ये जो मिकदार वाली किस्म है ये कसरत से वाक़े होती है इसलिए क्योंकि मिकदार के अंदर इबहाम होता है, जबकि गैर मिकदार में कभी कभार इबहाम आता है तो वहां फिर तमीज लाकर इबहाम को दूर किया जाता है। तो मालूम हुआ कि तमीज की पहली किस्म जो मुफरद से इबहाम को दूर करती है उसका तहक्कुक और वुकू ज्यादातर मुफरद मिकदार के जिमन में होता है और इसका कम तहक्कुक जो है मुफरद गैर मिकदार के जिमन में होता है। और नीज आपको जाब्ता बतलाया था कि हर मुकय्यद के जिमन में मुतलक मौजूद होता है, यह यूं कहें कि हर खास के जिमन में आम मौजूद होता है, जैसे हैवान है आम और इंसान है खास। तो जो भी इंसान होगा वह हैवान जरूर होगा क्योंकि इंसान किसे कहते हैं, हैवान नातिक को भाई। तो इंसान होगा ही वो जो हैवान नातिक हो, मालूम हो वो हैवान भी है। तो हैवान हुआ आम और इंसान हुआ खास और हर खास के जिमन में आम कह लें या यूं कहें मुतलक जो है वो मौजूद होता है। तो हर इंसान के जिमन में हैवान भी मौजूद है। ये जैसे लाहौरी और पाकिस्तानी, पाकिस्तानी आम है इसमें लाहौरी के अलावा और भी लोग दाखिल हैं और लाहौरी खास है उसके मुकाबले में, लेकिन जो भी लाहौरी है वो पाकिस्तानी भी है। तो देखो हर खास के जिमन में आम मौजूद होता है। तो साहिब जामी ने आपको बतलाया कि ये जो इश्काल इसलिए पेश आया कि आपने गालिबन को मुफरद मिकदार के लिए कैद बनाया, इसको मुफरद मिकदार के लिए कैद ना बनाओ बल्कि सिर्फ मुफरद के लिए कैद बनाओ। मसलन यूं कहें कि मुफरद से भी रफ़ इबहाम होता है और मुफरद मिकदार से भी रफ़ इबहाम होता है, लेकिन मुफरद से जो रफ़ इबहाम है वो है रफ़ मुतलक, वो है रफ़ इबहाम मुतलक, उसमें मिकदार या गैर मिकदार की कैद नहीं है। और मुफरद मिकदार से जो रफ़ इबहाम होता है वो रफ़ इबहाम खास है क्योंकि उसमें अन मिकदारिन की कैद है। तो मुफरद से रफ़ इबहाम होगा कौन सा, रफ़ इबहाम मुतलक क्योंकि उसमें मिकदार या गैर मिकदार की कोई कैद नहीं, और मुफरद मिकदार से जो रफ़ इबहाम होगा वो है रफ़ इबहाम खास क्योंकि इसमें मिकदार की कैद मौजूद है। तो देखो फर्ज कर लो अगर मुफरद के कुल 100 मादे हैं तो मुफरद मिकदार के 80 मादे हैं और मुफरद गैर मिकदार के 20 मादे हैं। तो ये जो मुफरद है जिसकी दो किस्में बन रही हैं इसके 100 मादे हैं और तमीज आकर 100 के 100 मादों से इबहाम को दूर करती है, लेकिन इस मुफरद का तहक्कुक ज्यादातर किस सूरत में होता है, मुफरद मिकदार वाली सूरत में होता है और हर खास के जिमन में आम भी मौजूद है। तो यूं कहेंगे कि ये जो मुफरद मिकदार से जो रफ़ इबहाम होता है वो ज्यादातर मुफरद मिकदार के जिमन में होता है, या यूं कहें कि वो जो रफ़ मुतलक है जो किससे होती है, मुफरद से, वो रफ़ मुतलक गालिबन और ज्यादातर किसके जिमन में होती है, मुफरद मिकदार यानी इस रफ़ खास के जिमन में होती है। वो रफ़ मुतलक किसके जिमन में ज्यादा होती है, इस रफ़ खास के जिमन में होती है। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा हासिल कलाम क्या हुआ कि गालिबन को रफ़ खास के लिए कैद न बनाओ बल्कि इसको रफ़ आम के लिए या रफ़ मुतलक के लिए कैद बनाओ। अब मसला सारा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब आइए इसको जरा मतन की इबारत पर भी मुंतबिक कर लें। देखिए जरा मतन की इबारत, फल अव्वलु अन मुफरदिन, ये अन मुफरदिन को किससे जोड़ा था, यरफाउहू से, अयरफाउल इबहाम, जरा उसको भी मतन के साथ जोड़ लें, फल अव्वलु यरफाउल इबहामा अन मुफरदिन मिकदारिन गालिबन। तवज्जो है, तो देखो यरफाउल इबहाम आया, यरफाउल इबहाम क्या है, वही रफ़ इबहाम है, मस्तर बना लो इससे, ये क्या है यरफाउल इबहाम क्या है, रफ़ इबहाम है, और किससे है रफ़ इबहाम, अन मुफरदिन मिकदारिन, रफ़े आम है या रफ़े खास है, रफ़े खास है क्योंकि मिकदार की कैद यहां मौजूद है। तवज्जो है तो मालूम हुआ इबारत में रफ़े इबहाम खास जिक्र हो रही है और आपने गालिबन को इसी रफ़े इबहाम खास के लिए कैद बनाया था, इसीलिए सारा इश्काल पेश आया था क्योंकि इसका माना तो यह बन गया था कि रफ़े तवज्जो से रफ़े इबहाम खास के वो जो 80 मादे हैं उनमें से गालिब के अंदर रफ़े इबहाम होता है यानी 60 या 70 में होता है, बाकी 15-20 के अंदर रफ़े इबहाम नहीं होता। यह इश्काल लाजिम आ रहा था क्योंकि मतन में रफ़े खास का जिक्र है। बात समझ में आ गई, लेकिन साहिब जामी ने बतलाया आपको कि हर रफ़े खास के जिमन में रफ़े इबहाम में मुतलक भी मौजूद है, यानी यूं कहो रफ़े मुतलक भी मौजूद है। तो इस गालिबन को उस रफ़े मुतलक के लिए कैद बनाएं जो इस रफ़े खास के जिमन में मौजूद है। तो अब इश्काल खत्म हुआ। तो यूं करें तर्जमा कि तमीज की जो पहली किस्म है वो ज्यादातर रफ़े इबहाम में मुतलक करती है इस रफ़े खास के जिमन में, इस रफ़े खास के जिमन में, क्योंकि वह रफ़े आम ज्यादातर इस रफ़े खास के जिमन में पाया जाता है। माना समझ में आ गया। तो मतन में क्या आया था? रफ़े खास, और उसकी वजह से इश्काल पैदा हुआ था क्योंकि गालिबन उसी के लिए कैद बन रहा था बजाहिर, लेकिन साहिब जामी ने आपको बतलाया कि हर खास के जिमन में आम मौजूद होता है, तो इस रफ़े खास के जिमन में जो रफ़े आम मौजूद है ये गालिबन को उसके लिए कैद बनाओ। और रफ़े आम के तो 100 मादे हैं और उस 100 में से अक्सर मादे यानी 80 मादे इसके अंदर पाए जाते हैं, तो वह रफ़े आम जो है वह इस रफ़े खास के जिमन में ज्यादा पाया जाता है। बात समझ में आ गई। तो यह माना है, देखो अब तर्जमा फिर दोबारा देख लें। देखिए तर्जमा, गालिबन ऐफी गालिबिल मवादी व अक्सरिहा, यानी उसके गालिब और अक्सर मादों में ऐ रफ़ुल इबहामी मुतलकन यतहक्ककू फी ज़िम्नी हाज़ा रफ़ुल खासी, कि रफ़े इबहाम मुतलकन जो है वो पाया जाता है इस रफ़े खास के ज़िमन में फी अक्सरिल मवादी, अपने अक्सर मादों में, अपने अक्सर मादों के एतबार से वो रफ़े आम इस रफ़े खास के जिमन में पाया जाता है। बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद मिसालें जिक्र की थी साहिब काफिया ने। भाई मैंने आपको बतलाया था कि मिकदारें जो हैं वो 5 किस्म पर हैं, या अदद होगा, या वजन होगा, या कैल होगा, या मिसाहत यानी वो जिरा पैमाइश होगी, या अंदाजा होगा यानी मिकयास होगा, और तमीज इनसे आकर इबहाम को दूर कर देती है। और साहिब काफिया ने आपको यह भी बतलाया कि जो अदद है इसका अनकरीब जिक्र आगे आएगा, यानी वहां पर यह जो अदद से जो तमीज आती है वहां वो उसका तफसीली बयान करेंगे। तो यहां जो अहकाम आगे जिक्र होंगे वो अदद की तमीज के बारे में नहीं है, अदद की तमीज का बयान आगे आएगा, या अदद के अलावा बाकी जो मिकदारें हैं उनके आगे अहकाम वो जिक्र कर रहे हैं। भाई फिर आपको साहिब जामी ने यह भी बतलाया था कि यहां मिकदारें बोलकर मुकद्दरात मुराद हैं, इसलिए क्योंकि उन मिकदारों में कोई इबहाम नहीं है। रितल निस्फ मन को कहते हैं, कोई इबहाम नहीं। इशरूना 20 के अदद को कहते हैं, कोई इबहाम नहीं। इसी तरह जिराउन जिरा के अंदर कोई इबहाम नहीं है। तो यहां मिकदारें बोलकर मुकद्दरात मुराद हैं। तो सवाल पैदा हुआ कि जिक्र तो मिकदारें हो रही हैं, उनसे मुकद्दरात कैसे मुराद ले रहे हैं आप? तो साहिब जामी ने बतलाया था कि भाई यहां पर ये मिकदारें जो जिक्र हो रही हैं ये कोई अलहदा चीज नहीं। रितलुन जैतन जब कहा तो रितल और जैत कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, उसी जैत का रितल बयान हो रहा है। जब इशरूना दिरहमन कहा तो इशरूना और दिरहम कोई अलग चीजें नहीं है, इशरूना उसी दिरहम की मिकदार बयान कर रहा है, तो दोनों यहां पर एक है। तो यहां मिकदारें बोलकर मुकद्दरात मुराद हैं। और फिर इश्काल हुआ था कि साहिब काफिया ने तमाम मिकदारों की मिसालें क्यों नहीं जिक्र की? तो साहिब जामी ने बतलाया कि साहिब काफिया का मकसद यहां पर मिकदारें गिनवाना नहीं है, बल्कि वो उन चीजों को बयान करना चाहते हैं जिनके जरिए कोई इसम ताम होता है। और इसम ताम होता है कभी तनवीन के जरिए, जैसे इंदी रितुलन जैतन, ये रितुलन ताम हो रहा है तनवीन के जरिए, और इसम कभी ताम होता है नूने जमा या नूने तस्निया के जरिए, जैसे इंदी इशुरूना दिरहमन, ये नूने जमा से ताम हो रहा है, और इंदी मनवान इसमनन, ये नूने तस्निया के जरिए मनवान जो है ताम हो रहा है, और कभी कभार इसम ताम होता है मुजाफिले के जरिए, अलत तमरति मिसलु हा जुबदन, ये मिसलु ताम हो रहा है हा जमी जो मुजाफुन इले है। तो वो मुतनब्बेह करना चाहते हैं दरअसल इन मिसालों के जरिए उन चीजों पर जिनके जरिए कोई इसम ताम होता है, और ताम होने का क्या माना, यानी इसम ऐसी हालत पर हो कि उस हालत में उसकी इजाफत न हो सके। तो जब रितलुन तनवीन के साथ ताम हो गया, इस हालत में इसकी इजाफत नहीं हो सकती, अगर आप इजाफत करना चाहते हैं तो तनवीन को हटाना पड़ेगा। नूने और तस्निया और जमा भी इजाफत में गिर जाते हैं तो इनसे भी कोई इसम ताम हो जाता है, जब नूने तस्निया और जमा मौजूद हो तो मालूम हुआ इसम ताम हो चुका है, आगे इसका कोई मुजाफिले नहीं आ रहा। और इसी तरह जब मुजाफ के आगे एक मुजाफिले आ जाए तो इस मुजाफ के आगे मजीद इजाफत नहीं की जाती, इस मुजाफिले के जरिए वो ताम हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने ये मिसालें जिक्र की, सबकी मिसालें भी जिक्र नहीं की और बास को मुकर्रर जिक्र किया, वजन की दो दफा मिसाल जिक्र कर दी, नून की भी दो मिसालें जिक्र कर दी, जबकि कैल और जेरा की मिसाल ही जिक्र नहीं फरमाई साहिबे काफिया ने। और फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि ये जो तमीज की पहली किस्म है इसके अंदर ये जो मुफरद मुबहम ताम है यही इसको नसब देता है। इंदी रितुलुन जैतन, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जैतन को नसब किसने दिया तो आप कहें इस रितुलुन ने, ये जो मुफरद मुबहम ताम है, मुफरद है यानी जुमला या जुमला या शिबे जुमला या मुजाफ नहीं है, और नीज मुबहम है इसीलिए आगे तमीज लाई गई, और नीज ताम है या तनवीन के जरिए या नून के जरिए या इजाफत के जरिए। तो तमीज की पहली किस्म में तमीज का आमिल क्या, नसब कौन सी चीज देती है तमीज को, मुफरद मुबहम ताम, या मुख्तसर लफ्जों में यूं कहो कि तमीज की पहली किस्म को इसमें ताम नसब देता है। कौन नसब देता है, इसमें ताम नसब देता है, यानी वो इसम जो तनवीन या नूने तस्निया और जमा या मुजाफिले के जरिए ताम हो रहा हो तो वो इसमें ताम जो है तमीज को नसब देता है। बात समझ में आ गई। और ये क्यों नसब देता है ये इसमें ताम, कहते हैं वजह ये है कि जब इसम ताम हो जाता है तो इसकी मुशाबहत फेल के साथ आ जाती है, फेल जैसे फेल के बाद फाइल आता है और फेल उसके जरिए ताम हो जाता है, और फेल ताम होने के बाद फिर आगे मफूल को नसब भी देता है। तो इसी तरह ये चीजें जो हैं ये तनवीन है या नूने तस्निया और जमा है या जो आगे मुजाफिले आ रहे हैं ये भी उस इसमें ताम के बाद आ रहे हैं, तो ये चीजें भी फाइल की तरह हो गई और वो इसमें ताम फेल की तरह हुआ, और फेल जैसे फाइल से ताम होता है ये इसम इन चीजों के जरिए ताम हो गया तो ये किसकी तरह हुआ, फेल की तरह, और फेल जब ताम हो जाए फाइल के जरिए तो आगे फिर वो मफूल को नसब भी देता है। तो ये इसम भी जब इन चीजों के जरिए ताम हो गया तो अब ये भी आगे तमीज को नसब देता है, जैसे कि फेल मफूल भी को नसब देता है। बात समझ में आ गई। चुनाचे कहते हैं इसीलिए लामे तारीफ के जरिए भी इसम ताम हो जाता है, लेकिन लामे तारीफ इसम के शुरू में आता है, लिहाजा उसकी वजह से अब तमीज को आप नसब नहीं दे सकते। आप कहना चाहते हैं मेरे पास एक मटका सिरका है तो यूं नहीं कह सकते इंदिर राकूद खल्लन, और राकूद पर आप अलिफ लाम ले आए और उसके जरिए आप आगे खल्लन तमीज उसे लाना चाहते हैं, नहीं भाई ये अर राकूद की मुशाबिहत फेल के साथ नहीं, क्योंकि अलिफ लाम जिसके जरिए यह अर राकूद ताम हो रहा है वो उस अर्राकूद के आखिर में नहीं है बल्कि उसके शुरू में है, तो इसकी मुशाबहत फेल के साथ नहीं, जब फेल के साथ मुशाबहत नहीं तो ये तमीज को नसब भी नहीं दे सकता। हां अगर आप ये कहना चाहते हैं तो फिर अलिफ लाम के बगैर तनवीन के साथ ले आए, यूं कहेंगे इंदी राकूदुन खल्लन, इंदी राकूदुन खल्लन, अब ये राकूदुन जो है ये तनवीन के साथ ताम हो रहा है, ये खल्लन तमीज को नसब दे सकता है। बात समझ में आ गई जी। आगे देखिए भाई, आज का सबक फयुफरदु अई तमीज व इन कान लिस्मु ताम मुसन्नन औ मजमुआ, इनकान आई तमीज जिनसन। भाई अब आगे तमीज के चंद अहकाम जिक्र करेंगे साहिब काफिया, आपको बतलाएंगे कि कहां पर तमीज को मुफरद लाएंगे और कहां आप तमीज को तस्निया और जमा ला सकते हैं। इंदे रेतुलन जैतन, ये जैतन देखो मुफरद है, तमीज है, कहां पर आप इसको तस्निया ला सकते हैं जैतैनी, कहां आप इसको तमीज को जमा ला सकते हैं जुयूतन। तो अब वो बयान करेंगे तो आपको बतलाएंगे भाई कि अगर तमीज जिन्स हो, अगर तमीज जिन्स हो तो उसको हमेशा मुफरद लाएंगे, हमेशा मुफरद लाएंगे, चाहे अगरचे माकबल में वो जो इसमें ताम है वो तस्निया या जमा ही क्यों ना हो। जब तमीज क्या हो, जेंस हो, तो उसको मुफरद लाना वाजिब है, चाहे माकबल में जो मुमैयज है वो तस्निया या जमा ही क्यों ना हो। जैसे इंदी रेतुलन जैतन, रेतुलन ये है वो इसमें ताम जिससे तमीज आ रही है, तो ये इसमें ताम चाहे तस्निया और जमा ही क्यों ना हो, ये जैतन तमीज को मुफरद रखेंगे। कब? जब वो जेंस हो। जब वो मसलन रेतलुन की तस्निया ले आए, इंदी रितलानी जैतन, मेरे पास दो रितल हैं बैतेबार जैतून के तेल के, या जमा ले आए इंदी अरतालुन जैतन, मेरे पास कई रितल हैं बैतेबार जैतून के तेल के। तो साहिब काफिया आपको बतला रहे हैं कि तमीज अगर जिन्स हो तो उसको मुफरद रखेंगे, मुफरद रखना वाजिब है। और जिन्स किसे कहते हैं, साहिबे जामी आपको बतलाएंगे कि जिन्स वो चीज है जिसके अज्जा बाहम एक दूसरे के मुशाबे हों। एक चीज है आप उसके हिस्से कर दें, उसके अज्जा कर दें, तो भी उन अज्जा, वो अज्जा आपस में एक दूसरे के मुशाबे हों। और वो लफ्ज जब बगैर ता के हो तो कलील और कसीर सब पर बोला जाए। कलील और, जैसे देखो पानी है, आपके पास एक बाल्टी पानी है, आप उस पानी के कई हिस्से कर दें, कई हिस्सों में तकसीम कर दें, तो फिर भी वो पानी ही कहलाएगा। इकट्ठा था बाल्टी में था फिर भी पानी, और अलग अलग 10 हिस्से कर दिए तो भी हर हिस्सा क्या है, पानी। और देखो ये हिस्से और ये अज्जा एक दूसरे के मुशाबे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो जिन्स किसे कहते हैं, जिसके अज्जा बाहम एक दूसरे के मुशाबे हों, और वो लफ्ज कलील और कसीर सब पर बोला जाए जब वो बगैर ताके हो। तो पानी बहुत ज्यादा हो तो भी वो पानी है, चाहे समुंदर में हो चाहे दरिया में हो, ये फिर भी क्या है, पानी। और थोड़ा सा पानी हो आपके पास वो भी क्या है, पानी। तो मा उन, तवज्जो है, अरबी में पानी को क्या कहते हैं, मा। ये मा का लफ्ज जो है कलील पर भी बोला जाएगा और कसीर पर भी, एक गिलास हो फिर भी मा, और दरिया हो तो भी मा है भाई। इसी तरह और भी देख लें भाई, उर्दू में देख लें, जैसे गंदम है, थोड़ी हो तो भी गंदम, ज्यादा हो तो भी गंदम। चावल देख लें, थोड़े हो तो भी चावल, ढेर लगा हुआ हो तो भी वो चावल हैं। तो देखो इनके अज्जा एक दूसरे के मुशाबे हैं। आप चावल का ढेर लगा है, उस ढेर के 10 हिस्से आप कर दें, फिर भी हर हिस्सा एक दूसरे के मुशाबे है। तो जिन्स किसे कहते हैं, जिसके हिस्से और अज्जा आपस में एक दूसरे के मुशाबे हों, और वो लफ्ज जब बगैर ताके हो तो कलील और कसीर सब पर बोला जाए। भाई बाद औकात ता वहदत के लिए अरबी में लाई जाती है, जैसे तमरुन और तमरतुन। तमरतुन में यह ता वहदत की है, अगर आप कहना चाहते हैं एक खजूर तो कहेंगे तमरतुन, तमरतुन। और अगर ता हटा देंगे तो यह तमर, याद रखो यह इसमें जिन्स है भाई, यह कलील पर भी बोला जाता है और कसीर पर भी। ये एक खजूर हो फिर भी आप कह सकते हैं तमरुन, दो हो फिर भी कहेंगे तमरुन, ज्यादा हो तब भी क्या कहेंगे, तमरुन कहेंगे। तो तमरुन देखो ऐसा लफ्ज है जो कलील और कसीर सब पर बोला जाता है, एक हो तब भी आप तमरुन कह सकते हैं। तो देखो जब आपने लफ्ज तमरुन कहा तो इससे पता नहीं चला खजूर एक है, दो हैं या ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपका इरादा है बिलखुसूस एक खजूर के का लफ्ज बोलना चाहते हैं तो फिर ता साथ मिलाकर कहेंगे तमरतुन। तवज्जो है, तो आप ये ना कहें तमरतुन का तो माना है एक खजूर, तो तमरुन का माना होगा ज्यादा खजूरें। नहीं, तमरुन जिन्स है, कलील पर भी बोला जाता है और कसीर पर। इसी तरह बकरुन, बकर गाय बैल को कहते हैं, अगर ये गोल ता के साथ हो बकारतुन तो इसका माना है जिनसे बकर में से एक फर्द भाई, और अगर आप गोलता हटा दें बकर तो फिर ये कलील और कसीर सब पर बोला जाएगा, एक हो तो भी बकर, दो हो तो भी बकर, ज्यादा हो तो भी बकर भाई। तो जिंस किसे कहते हैं, जिसके अज्जा बाहम एक दूसरे के मुशाबे हों और बगैर ता के उसका इतलाक कलील और कसीर सब पर होता हो, जबकि बाज लफ्जों में फर्क होता है भाई, अगर वो जिंस ना हो। वहां देखो एक आदमी हो तो कहते हैं रजुलुन, दो हो तो आप कहते हैं रजुलानी, दो से ज्यादा हो तो आप कहते हैं रिजालुन। तो देखो रजुल का लफ्ज जो है वो जिंस नहीं है, वो कलील और कसीर पर आप नहीं बोल सकते, अगरचे रजुल के साथ ताबी नहीं जुड़ी हुई, लेकिन रजुल का माना एक फर्द भाई, और दो कहना चाहते हैं तो अब रजुल नहीं कहेंगे, आप रजुलानी के तस्निया का सीगा लाएंगे, और अगर आप ज्यादा मर्द बतलाना चाहते हैं तो रिजाल कहेंगे भाई। जबकि जिंस वो कलील और कसीर सब पर, वो ही एक लफ्ज बोला जाता है, वो ही तम्र, एक पर भी, दो पर भी और ज्यादा पर भी, लेकिन रजुल में ऐसा नहीं है। मालूम हुआ जिंस किसे कहते हैं, जिसके अज्जा बहम एक दूसरे के मुशाबे हों और नीज जब वो ता से खाली हो तो कलील और कसीर सब पर उसका इतलाक होता हो। बात समझ में आ गई। तो देखिए पहले मतन कहते हैं फयू फरदू इनकान जिनसन, तो तमीज जो है वो मुफरद लाई जाएगी, इनकान जिनसन अगर तमीज जिंस हो भाई। इल्ला अन तुक्सदल अनवाउ, ये इस्तिस्ना कर रहे हैं माकबल से। इधर देखिए इन्होंने आपको बतलाया कि तमीज जब जींस हो तो उसको मुफरद लाना वाजिब है, उसको मुफरद लाते हैं। इल्ला अन तुक्सदल अनवाउ, मगर ये कि अनवा यानी अकसाम का इरादा किया जाए, तमीज जब जींस हो तो उसको मुफरद ही लाएंगे। इल्ला ये कि आपका इरादा है, आप किसी चीज की अनवा और अकसाम बतलाना चाहते हैं तो फिर आप उसको तस्निया और जमा भी ला सकते हैं, फिर आप उसको तस्निया और जमा भी ला सकते हैं। मसलन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे पास दो रीतल दो किस्म का जैतून का तेल है, तो अगर मैं यूं कहूं इंदी रितलानी जैतन, जैतन को मैं मुफरद रखूं तो माना क्या हुआ, इंदी रितलानी, मेरे पास दो रितल हैं जैतन बैतबार जैतून के तेल के, तो इससे अनवा का पता नहीं चलेगा। तमीज अगरची यहां जिंस है, याद रखो ये जैद जिंस है भाई, साहिब जामी भी आपको बतलाएंगे ये जैद क्या है, जिंस है। जैतून का तेल थोड़ा हो तो भी जैद, ज्यादा हो तो भी जैद, तो इसके अज्जा बाहम एक दूसरे के मुशाबे हैं और कलील और कसीर सबको जैद कहते हैं। असल मैंने क्या कहा, इंदी रितलानी जैतन, कि मेरे पास दो रितल हैं जैतून के तेल के एतबार से, यानी मेरे पास दो रितल जैतून का तेल है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास दो किस्म का जैतून का तेल है, दो रितल, यानी एक रितल एक किस्म का है, एक रितल दूसरी किस्म, तो मैं अनवा बतलाना चाहता हूं। तो जैद जिंस है भाई, जैद और तमीज जब जिंस हो तो उसको हमेशा मुफरद रखते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा अनवा बयान करने का हो तो फिर उसको तस्निया जमा ला सकते हैं। तो अब मैं यहां फिर अनवा बतलाने के लिए तस्निया इसको लाऊंगा और यूं कहूंगा इंदी रितलानी जैतैनी, जैद की तस्निया क्या, जैतानी, और तमीज मंसूब होती है तो इसको हालत नस्बी में ले जाए जैतैनी, तो इंदी रितलानी जैतैनी। और अगर मैं बतलाना चाहता हूं आपको कि मेरे पास कई रितल कई किस्म का जैतून का तेल है तो कैसे कहूंगा, इंदी अरतालुन जुयूतन, अतमीज अगर जिंस हो तो उसको मुफरद रखेंगे, इल्ला ये कि आपका इरादा अनवा बयान करने का हो तो फिर माकबल के अंदर वो जो मुमैयज है उसके मुताबिक तमीज लाएंगे। मुमैयज अगर तस्निया है दो किस्में बताना चाहते हैं तो तमीज भी तस्निया लाओ, मुमैयज अगर जमा है तो और कई किस्में बतलाना चाहते हैं तो तमीज को भी जमा लाओ। मालूम हुआ कैसे कहेंगे, इंदी रितलानी जैतैनी और इंदी अरतालुन जुयूतन, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फयुफरदु इनकान जिनसन, तो तमीज मुफरद लाई जाएगी अगर वो जिंस हो, इल्ला अन तुक्सदल अनवाउ, मगर ये के अनवा का इरादा किया जाए भाई। देखिए इन्होंने क्या कहा, इल्ला अन तुक्सदल अनवाउ, मगर ये के अनवा का इरादा किया जाए। अनवा तो जमा है नौ की, और जमा का इतलाक कम से कम कितने अफराद पर होता है, तीन या ज्यादा पर होता है, गोया साहिब काफिया के कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप तीन या ज्यादा अनवा का इरादा करें तो फिर आप तमीज को जमा लाएंगे। इसमें तो तस्निया दाखिल नहीं क्योंकि अनवा जमा है, तो मगर यह कि आप अनवा का इरादा करें तो साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि यहां यहां अनवा जो जमा लाए हैं इससे मुराद मा फौकल वाहिद है, यानी एक से जो जायद हो। यहां जमा से हकीकी जमा नहीं मुराद, हकीकत में जमा किसे कहते हैं जो तीन या तीन से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल हो। यहां जमा लुगवी मुराद है, अरबी जुबान के एतबार से जो भी एक से जायद है उसको जमा कह देते हैं उसको। तो यहां पर भी जमा लुगवी मुराद है, अनवा कौन सा सिगा है जमा का, लेकिन जमा लुगवी मुराद है। और जमा लुगवी का इतलाक किस पर होता है, मा फौकल वाहिद, जो एक से ज्यादा है। तो इसमें तस्निया भी आ गया और इसके अंदर जमा भी आ गई, यानी तमीज हमेशा मुफरद लाएंगे इल्ला कि आप एक से ज्यादा का इरादा करें, यानी तस्निया या जमा का इरादा करें तो तस्निया के लिए तस्निया लाएंगे और जमा के लिए जमा लाएंगे। माना समझ में आ गया। आगे देखिए मतन मतन व युज माउफी गैर ही ऐफी गैर जिनसी, और गैर जिन्स के अंदर भाई तमीज जो है वो जमा लाई जा सकती है, जमा लाई जा सकती है। याद रखो भाई याद रखो, यहां पर भी जमा से जमा लुगवी मुराद है, यानी मा फौकल वाहिद मुराद है, तो तस्निया भी इसी में शामिल हुआ। यानी जिन्स के अलावा अगर तमीज जिन्स ना हो तो फिर इस सूरत में तमीज को आप तस्निया और जमा ला सकते हैं जबकि आपका इरादा वाहिद का ना हो। आपका इरादा मसलन देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे पास एक गठड़ी है कपड़ों के एतबार से, तो मैं कहूंगा इंदी इदलुन सौबन। इदलुन अरबी जुबान में गठड़ी को कहते हैं जिसमें वो चीजें वगैरह बांधी जाएं, भाई गठड़ी या थैला वगैरह। तो इंदी इदलुन सौबन, मेरे पास एक गठड़ी है सौबन बेतबार कपड़ों के, तो यह सौबन तमीज है। इदलुन में इबहाम था, इंदी इदलुन मेरे पास एक गठड़ी है भाई किस चीज की, आगे सौबन तमीज ने आकर इबहाम को दूर कर दिया। तो यहां पर देखो ये कपड़ा ये गैरे जिन्स है, जिन्स को तो मुफरद रखते हैं लेकिन ये तो गैरे जिन्स है, तो गैरे जिन्स में अगर आपका इरादा तस्निया या जमा का है तो फिर वो भी ला सकते हैं। तो अब मैं दो कपड़ों का इरादा करता हूं, यानी कि दो कपड़ों की गठड़ी है, तो मैं कहूंगा इंदी इदलुन सौबैनी, मेरे पास एक गठड़ी है बैतबार दो कपड़ों के, यानी दो कपड़ों की एक गठड़ी है। या अगर मैं ज्यादा कपड़ों का इरादा करता हूं तो फिर जमा लाऊंगा इंदी इदलुन अस्वाबन, मेरे पास एक गठड़ी है कई कपड़ों के एतबार से, यानी उस एक गठड़ी में कई कपड़े हैं भाई। ये उस वक्त तस्निया और जमा लाएंगे जबकि आपका इरादा तस्निया या जमा का हो। अगर आपका इरादा तस्निया या जमा का नहीं है तो फिर यहां भी मुफरद ही लाएंगे इंदी इदलुन सौबन। बात समझ में आ रही है, मालूम हुआ जिन्स को तो हमेशा मुफरद रखेंगे इल्ला ये कि अनवा का इरादा किया जाए फिर उसको तस्निया और जमा लाएंगे, और गैर जिन्स के अंदर अगर आपका इरादा वाहिद के अलावा है, किसके भाई वाहिद है, फिर तो मुफरद ही लाएंगे उसके लिए। हां अगर गैर जिन्स में आपका इरादा वाहिद के अलावा का है तो फिर आप तस्निया और जमा लाएंगे। बात समझ में आ गई, इंदी इदलुन सौबैनी और इंदी इदलुन अस्वाबन, सूरत समझ में आ गई। अब देखिए सारे को शरा के साथ भाई कहते हैं फयुफरदु अयी तमयीजु, जी फयुफरदु फेले मजहूल है, इसके अंदर हुआ जमीर किसको राजे है, आगे साहिब जामी ने बतला दिया अयी तमयीजु कि तमीज को जमीर राजे है। फयुफरदु अयी तमयीजु, तमीज को मुफरद लाया जाएगा। व इनकान अलिस मुत्ताम मुसन्नन औ मजमूअन, अगरचे वो इसमें ताम तस्निया या जमा हो। भाई मैंने आपको बताया इधर देखिए, अगर तमीज जिन्स है तो फिर मुफरद ही लाएंगे, चाहे माकबल में वो जो मुमैयस है वो जो इसमें ताम है चाहे वो तस्निया या जमा ही क्यों ना हो। इंदी रेतुलन जैतन, इंदी रेतलानी जैतन, इंदी अरतालुन जैतन, सबके लिए उसी तरह रहेगा क्योंकि तमीज जिन्स है। यहां तस्निया जमा लाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जैत क्या है जिन्स, और जिन्स का इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है। यह माना है वह इनकान अलिस्मु तामु मुसन्नन औ मजमूअन, अगरचे वो इसमें ताम जो है वो तस्निया या जमा हो। इनकान इसको मतन को मतन से जोड़ें, कि तमीज मुफरद लाएंगे इन कान अयत तमीज जिनसन, अगर वो तमीज जिन्स हो। तमीज को मुफरद कब लाएंगे? अगर वो जिन्स हो। जिन्स किसे कहते हैं? कहते हैं वह हुआ मायत शाह बहु अजा उहू, कि जिन्स वो है जिसके अजा बाहम एक दूसरे के मुशाबे हों। वयकउ मुजर्रदन अनित ताइअल कलील वल कसीर, और वो तमीज जो है ता से खाली होकर वाके हो कलील और कसीर पर। तर्जमा समझ में आया? वयकउ मुजर्रदन, और वो तमीज वाके हो मुजर्रदन इस हाल में कि वो खाली हो अनित ताई ता से, तो ता से खाली होकर वो वाके होती हो अलल कलील वल कसीर, कलील और कसीर पर। तो ये है जिन्स। तो कहते हैं फला हाजत इला तस्नियत ही व जमई ही, तो कोई हाजत नहीं है इसकी तस्निया और इसकी जमा की। भाई तमीज जब जिन्स हो तो उसको मुफरद रखेंगे, क्योंकि वो कलील और कसीर सब पर सादिक आ रही है, वो मुफरद होते हुए कलील और कसीर सब पर सादिक आ रही है, तो कोई हाजत नहीं है उसकी तस्निया और जमा लाने की। यह माना है फला हाजत इला तस्नियत ही व जमई ही, तो कोई हाजत नहीं है उसकी तस्निया और जमा की। कल माई, अब जिन्स की मिसालें दे रहे हैं, कल माई जैसे पानी है, व तमरी जैसे तमर है देखो बगैर ता के, व जैती और जैत है, व जरबी और जरब है। ये जरब देखो मस्तर लाए, मैंने आपको बताया था कि मस्तर ये भी इसमें जिन्स है, ये कलील और कसीर सब पर वाके होता है। एक जरब हो वो भी जरब है, हजार जरबे हो वो भी जरब है, तो मस्तर इसमें जिन्स है, ये कलील और कसीर सब पर वाके होता है। बात समझ में आ गई। चुनाचे यही वजह है फिका की किताबों में आप अक्सर पढ़ते हैं, मसलन वहां आता है किताबुल बुयू, किताबुल बुयू, तो वहां इश्काल होता है, वहां पर शारहीन इश्काल और जवाब फिर जिक्र करते हैं। इश्काल ये कि बे उन बे जो यह है ये तो मस्तर है, और मस्तर तो इसमें जिन्स है, और इसका इतलाक तो कलील और कसीर सब पर होता है, तो फिर जमा लाने की क्या हाजत थी? तो फिर यहां किताबुल बुयू जमा क्यों लाए? वही वजह दिए जो साहिब काफिया जिक्र फरमा रहे हैं कि तमीज जब जिन्स हो तो मुफरद लाते हैं, इल्ला अंतुकसद अल अनवा, मगर ये कि अनवा का इरादा किया जाए, तो वहां पर भी बै मस्तर है, इसमें जिन्स है, कलील और कसीर सब पर बोला जाता है, लेकिन चूंकि वहां पर अनवा का इरादा किया गया, चूंकि बै की अकसाम बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए वो अनवा बयान करने के लिए बुयू और जमा का लफ्ज वहां लाते हैं, तो किताबुल बुयू कहते हैं। बात समझ में आ गई। और यह भी याद रखना भाई, इन्होंने कहा कि जिन्स वो है जिसके अजजा एक दूसरे के मुशाबे हों, ये वो सूरत है अगर उस चीज के अजजा हो सकें, पानी के अजजा हो सकते हैं, खजूरों के अजजा हो सकते हैं, जैद के अजजा हो सकते हैं, तो ये वो सूरत है अजजा मुशाबे हों, जब अजजा हो सकें, जबकि जर्ब जर्ब तो मस्तर है, मस्तर के अजजा नहीं हो सकते। तो अब आप ये ना कहें कि आपने तो कहा था जिन्स वो है जिसके अजजा मुतशाबे होते हैं एक दूसरे के, और जर्ब के तो अजजा ही नहीं, तो जवाब क्या कि अजजा मुतशाबे होने का हुक्म तब लगाएंगे जब एक चीज के अजजा हो सके, जर्ब के अजजा ही नहीं हो सकते, तो इस पर इश्काल भी वारिद नहीं होता। बेखिलाफ रजुल व फरसिन, बेखिलाफ रजुल और फरस के, रजुल और फरस याद रखो ये जिन्स नहीं है। रजुल का लफ्ज एक मर्द के लिए बोला जाएगा, ये कलील और कसीर पर सादिक नहीं आता, दो हो तो रजुलानी, दो से ज्यादा हो तो रिजाल कहेंगे। और इसी तरह फरस भी, फरस याद रखो ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर हो घोड़ा हो उसके लिए भी फरस अरबी में कहते हैं, और उसी की मादा हो मुअन्नस हो उसके लिए भी फरस का लफ्ज बोलते हैं। तो मालूम हुआ फरस का लफ्ज मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता है, तो फिर उसी के मुताबिक जमीर इसकी तरफ राजे करेंगे। अगर फरस बोलकर मुजक्कर मुराद है, घोड़ा मुराद है, तो उसके लिए मुजक्कर की जमीर राजे करेंगे, और अगर फरस बोलकर घोड़ी मुराद है तो फिर वहां मुअन्नस की जमीर राजे करेंगे, क्योंकि ये दोनों पर बोला जाता है। और अगर आप खास तौर पर मुजक्कर घोड़ा बोलना चाहते हैं तो उसको अरबी में हिसानुन कहते हैं, हा है सौद है अलिफ और नून, हिसानुन ये है मुजक्कर घोड़े के लिए खास भाई ये लफ्ज। और इसी तरह अगर मुअन्नस जो है उसके लिए खास लफ्ज बोलना चाहते हैं तो उसको अरबी में हिजरुन कहते हैं, हा जीम रा हिजरुन। और नीज मुअन्नस के लिए फरसतुन का लफ्ज भी कभी बोल दिया जाता है, फरसतुन, फरस में तो रा पर फतहा था, फरसतुन में फिर रा साकिन हो जाएगी। तो मुअन्नस के लिए हिजरुन भी बोलते हैं और फरसतुन भी, जबकि फरस का लफ्ज मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यह हमेशा याद रखना भाई। और नीज याद रखना, खैलुन, खैलुन भी घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन याद रखो खैल घोड़ों की जमात को कहते हैं। किसको? घोड़ों की एक जमात हो, ज्यादा घोड़े हो उनको खैल कहेंगे, एक घोड़े को खैल नहीं कहते। तो ये फरस की जमा अफरास भी आती है और फुरूस भी आती है। तो ये फरस भी जिंस नहीं है। मुफरत के लिए कहेंगे फरसुन, तस्निया के लिए कहेंगे फरासानी, और जमा के लिए कहेंगे फुरूस या अफरास भाई। इल्ला अन तुक्सदल अनवा, मगर ये कि अनवा का इरादा किया जाए। मैंने बतलाया भाई अल अनवा से क्या मुराद है, जमाए लुगवी मुराद है, जमाए हकीकी मुराद नहीं। हकीकत में तो जमा के अफराद तीन या ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां जमाए लुगवी है और अरबी जुबान में एक से जायद जो हो उसको भी जमा कहते हैं। बात समझ में आ गई। इल्ला अन तुक्सदल अनवा, मगर ये कि अनवा का इरादा किया जाए, क्या माना? यानी एक से ज्यादा, यानी दो हो चाहे दो से ज्यादा हो, सब इसमें आ गए। तो तस्निया भी इसके अंदर दाखिल है। तो कहते हैं इल्ला अन तुक्सदल अनवाउ, मगर ये कि अनवा का इरादा किया जाए, ऐ मा फौकन नौइल वाहिदी। देखा अनवा से क्या मुराद है, वो जो एक नौ से जायद हो। फयशमुलुल मुसन्ना ऐजन, तो ये तस्निया को भी शामिल है। लिअन्नहु ला यदुल्लु, जी सवाल पैदा होता है कि तमीज जब जिंस है वो कलील और कसीर पर दलालत कर रही है, तो अनवा की सूरत में उसको तस्निया और जमा लाने की क्या हाजत है? तो जवाब दे रहे हैं साहिब जामी कि भाई जब मसलन मैंने कहा इंदी अरतालुन जैतन, जैतन को मैं मुफरद ही लाऊं, जैतन जिंस है और मैं मुफरद लाया, हालांकि माकबल में वो जो इसमें ताम है वो जमा है, जमा हो या तस्निया हो, तो सिर्फ जैतन कहने से फिर अनवा का पता नहीं चलेगा। इंदी अरताल उन जैतन का तो माना है मेरे पास कई रितल हैं जैतून का तेल, कई किस्म का है यह पता नहीं चल रहा। तो जिंस कलील और कसीर पर तो दलालत करती है लेकिन अनवा पर दलालत नहीं करती। तो फिर अनवा पर दलालत करने के लिए यह जो तमीज जो जिंस है इसको भी तस्निया या जमा लाएंगे भाई। कहते हैं अन्नहु ला यदुल्लु लफ्जुल जिंसी मुफरदन अलैहा, इसलिए क्योंकि जिंस का लफ्ज जो है वो इन अनवा पर मुफरद होकर दलालत नहीं करता। जिंस का लफ्ज मुफरद हो, हिंदी अरताल उन जैतन, ये जैतन मुफरद हो और ये अनवा पर दलालत करे, नहीं फिर ये अनवा पर दलालत नहीं करता। और आप तो अनवा बतलाना चाहते हैं तो फिर इसको तस्निया और जमाल लाएंगे। ये माना है लि अन्नहु ला यदुल्लु लफ्जुल जिंस मुफरदन अलैहा, इसलिए क्योंकि जिंस का लफ्ज मुफरद होकर उन अनवा पर दलालत नहीं करता। फला बुद्ध मिन अन युसन्ना औ युजमा, तो लिहाजा जरूरी है कि इस जिंस को तस्निया या जमा लाया जाए। कील वफी तख्सीस कस्दिल अनवा बिल इस्तिस्ना इन नजरुन, यहां इश्काल और उसका जवाब जिक्र करेंगे। इश्काल ये कि ऐ साहिबे काफिया, आपने अनवा का इस्तिस्ना किया। क्या कहा? पीछे जरा मतन देखें, तमीज को मुफरद लाएंगे अगर वो जिंस हो। इल्ला अन तुक्सदल अनवा, देखो इल्ला लाए इस्तिस्ना के लिए, मगर जिस वक्त अनवा का इरादा किया जाए, मगर उस वक्त जब मालूम हुआ अनवा के अलावा और सूरतों में तस्निया या जमा नहीं ला सकते, सिर्फ अनवा का जब इरादा करें तो फिर उसको तस्निया और जमा तमीज को ला सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ अनवा का इस्तेसना किया। इल्ला अंतुक्सदा, देखो इल्ला इस्तेसना के लिए लाए। तो इश्काल होता है कि भाई बाज औकात अनवा का इरादा होता है और बाज औकात आदद का भी इरादा होता है। आदद का इरादा होता है तो उस सूरत में भी तमीज को तस्निया और जमा लाया जाता है। जैसे देखो आगे मिसाल जिक्र कर रहे हैं, मिसाल इसी सतर के आखिर में देखें, ताब ज़ैदुन जलसतैनी, और इसी तरह आगे है ताब ज़ैदुन जलसतैनी। तवज्जो से सुनो भाई, मफूले मुतलक के अंदर यह बात आई थी कि फ़िअलतुन मस्दर जो है यह नौ बतलाने के लिए लाया जाता है। नौ, मसलन मैं कहना चाहता हूं जलस्तु जिलसतन, क्या माना? मैं एक खास नौ पर, एक खास तरीके पर बैठा, अगर मैं बतलाना चाहूं मैं दो तरीके पर बैठा तो मैं कहूंगा जलस्तु जिलसतैनी, तो ये जिलसा वजन किस लिए आता है? नौ बतलाने के लिए, और एक फा के फतहा के साथ है। जलस्तु जलसतन, ये जलसतन अदद बयान करने के लिए आता है। मैं बतलाना चाहता हूं मैं एक मर्तबा बैठा तो कैसे कहूंगा? जलस्तु जलसतन। और मैं दो दफा बैठा तो क्या कहूंगा? जलस्तु जलसतैनी। और ज्यादा दफा बैठा तो जलस्तु जलसातिन। तवज्जो है? तो ये मैं सिर्फ वजन बयान करना चाह रहा था। देखो, एक है फिअलतुन वजन, एक है फालतुन। फिअलतुन वजन मस्तर में किस लिए आता है? नौ के लिए। और फालतुन वजन किस लिए आता है? अदद बयान करने के लिए। तवज्जो है? तो कहते हैं देखो, ये मिसाल देखो, ताब ज़ैदुन जिलसतैनी, यहां जिलसतैन आया जीम के कसरा के साथ। ताब ज़ैदुन, ज़ैद अच्छा है, जिलसतैनी बैतेबार दो किस्म के बैठने के। तो देखो ये जिलसतैन, यहां ये तमीज वाके हो रही है, मफूले मुतलक नहीं है, तमीज है। ताब ज़ैदुन, ज़ैद अच्छा है, जिलसतैनी बैतेबार दो अनवा के बैठने के, दो किस्म के बैठने के एतबार से वो अच्छा है। तो देखो यहां पर तमीज लाई गई, और किस लिए लाई गई? नौ बयान करने के लिए। जिलसतुन वजन लाए ना। कहना ये चाहते हैं साहिबे जामी कि तमीज जब जींस हो, तमीज जब जींस हो तो उसको जैसे नौ बतलाने के लिए तस्निया और जमा ला सकते हैं, इसी तरह अदद बयान करने के लिए भी उसको तस्निया और जमा ला सकते हैं। जैसे पहली मिसाल क्या जिक्र की? आप नौ बतलाना चाहते हैं, दो किस्में बतलाना चाहते हैं, तो आप कहते हैं ताब ज़ैदुन जिलसतैन, ज़ैद अच्छा है दो नौ पर बैठने के एतबार से। देखो ये जिलसतैन तमीज है और तस्निया लाए, और किस लिए लाए? नौ बयान करने के लिए। और इसी तरह अदद बयान करने के लिए भी कभी तमीज लाते हैं, ताब ज़ैदुन जलसतैनी, ज़ैद अच्छा है दो मरतबा बैठने के एतबार से। अब देखो यहां जलसतैन जीम के फतहा के साथ है, और ये किस लिए आता है? ये वाला मस्तर अदद बयान करने के लिए। तो यहां ये मफूले मुतलक नहीं है, ये ख्याल रखना, ये तमीज बन रहे हैं, तमीज बन रहे हैं, और एक में तस्निया लाए नौ बयान करने के लिए, और एक में तस्निया लाए अदद बयान करने के लिए। मालूम हुआ तमीज जब जींस हो तो उसको जैसे नौ बयान करने के लिए तस्निया और जमा लाते हैं, इसी तरह अदद बयान करने के लिए भी उसको तस्निया और जमा लाते हैं। और आपने तो सिर्फ ऐसा हिबे काफिया किसका इस्तेसना किया? इल्ला अंतुक्सदल अनवाऊ, मगर यह कि अनवा का इरादा किया जाए। हालांकि आपको अदद भी कहना चाहिए था, आपको यूं कहना चाहिए था इल्ला अंतुक्सदल अनवाऊ वल आदादू, जबकि अनवा और आदाद का इरादा किया जाए, फिर तमीज चाहे जिंस भी हो उसको तस्निया और जमा लेकर आएंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए भाई, जरा पहले एतराज देख लें। कहते हैं कीला, कहा गया है वफी तख्सीस कस्दिल अनवा बिल इस्तिस्नाई, और अनवा के इरादे की तख्सीस। देखो तर्जमा में आखिर से कर रहा हूं, वफी तख्सीस कस्दिल अनवा, और अनवा के इरादे की तख्सीस बिल इस्तिस्ना, किसके जरिए? इस्तिस्ना। भाई देखो ना, पीछे इल्ला आया, इल्ला किस लिए आता है? तख्सीस के लिए। इससे पता चला कि सिर्फ अनवा का इरादा होगा तभी तस्निया और जमा ला सकते हैं, और किसी सूरत में तस्निया और जमा नहीं ला सकते। तो कहते हैं इस पर इश्काल होता है। कहते हैं वफी तख्सीस कस्दिल अनवा बिल इस्तिस्ना इन नजरुन, और ये जो अनवा के इरादे की तख्सीस की गई बिल इस्तिस्ना, इस्तिस्ना के जरिए, इसमें नजर उन, इसमें नजर है, इश्काल है। लियन्नहु कमा जाज अन युकाला, इसलिए क्योंकि जैसे ये जायज है कि यूं कहा जाए। क्या कहा जाए? ताब ज़ैदुन जिलसतैनी लिन्नौई, जैसे नौ बयान करने के लिए यूं कहा जाए ताब ज़ैदुन जिलसतैनी, कि ज़ैद अच्छा है बैतबार दो किस्म के बैठने के। तो जैसे नौ के लिए यूं कहना जायज है जाज अन युकाला, तो यह भी जायज है कि यूं कहा जाए ताब ज़ैदुन जिलसतैनी लिल अददी, किसके लिए? अदद के लिए। तर्जमा समझ में आ रहा है? फिर तर्जमा देखिए, कमा जाज अन युकाला ताब ज़ैदुन जिलसतैनी लिन्नौई, जैसे नौ के लिए यह कहना जायज है ताब ज़ैदुन जिलसतैनी, तो जाज अयु काल ताब जैदुन जल सतैनी लिल अददी, तो अदद के लिए ये कहना भी जायज है, ताब जैदुन जल सतैनी। तवज्जो है, इश्काल क्या हुआ, आपको अदद का भी इस्तिस्ना करना चाहिए था। अब उसका जवाब देंगे, कहते हैं वह युम किनु अयु जाबान हूं, और मुमकिन है कि इस एतराज से यह जवाब दिया जाए, बि अन्नल मुराद बिल अनवाई, के अनवा से मुराद जो है हिससुल जिनसी, जिन्स के हिस्से मुराद हैं, हिसस जमा है हिस्सत उनकी, के अनवा से मुराद हिससुल जिनसी, जिन्स के हिस्से हैं, सवा उनकानत बिल खसूसियातिल कुल्लियति अविशख्सिया, बराबर हैं कि जिन्स के वो हिस्से जो हैं खसूसियात कुल्लिया के साथ हों या खसूसियात शख्सिया के साथ हों। भाई एक जवाब दिया लेकिन कमजोर जवाब दिया, इसलिए वह युमकिनु अन युजाबअन्हु के साथ जवाब दे रहे हैं। इश्काल यहां होता है कि अनवा के साथ आदाद को भी जिक्र करना चाहिए था, तो जवाब यह देंगे कि भाई अनवा से जींस के हिस्से मुराद ले लें। क्या मुराद ले लें? जींस के हिस्से मुराद ले लें, तो फिर इसमें अनवा भी दाखिल हो जाएंगी और आदाद यानी अफराद भी दाखिल हो जाएंगे। भाई देखो, जींस के जो हिस्से हैं ना, वो दो किस्म के हो सकते हैं, कुल्लियात भी हो सकती हैं और जुजियात भी। बल्कि यह यूं समझो, मंतिक में आपने पढ़ा है, एक है कुल्ली और एक है जुजी। फिर जुजी दो किस्म पर है, या वो जुजी हकीकी होगी या जुजी इजाफी होगी। कुल्ली किसे कहते हैं? जो कसीरीन पर सादिक आए। देखो मैंने कहा किताब, ये कुल्ली है, दुनिया की हर किताब पर यह लफ्ज सादिक आ रहा है किताब। मैंने कहा कलम, ये कुल्ली है, दुनिया के हर कलम को आप कलम कह सकते हैं। इसी तरह इंसान, इंसान भी क्या है? कुल्ली है, कसीरीन पर सादिक आता है, जैद भी इंसान, अमर भी इंसान, बकर भी इंसान, खालिद भी इंसान। इसी तरह गाय, ये भी कुल्ली है, हर गाय पर आप ये लफ्ज बोल सकते हैं। इसी तरह घोड़ा, ये भी कुल्ली है, हर घोड़े पर आप ये लफ्ज बोल सकते हैं। तवज्जो है, तो कुल्ली किसे कहते हैं? जो कसीरीन पर सादिक आए। और एक है जुजी, जुजी उसे कहते हैं जो कसीरीन पर सादिक ना आए, जैसे जैद, लफ्ज जैद सिर्फ जात जैद पर सादिक आएगा और किसी पर नहीं। आमर, लफ्ज आमर सिर्फ आमर पे सादिक आएगा और किसी पर नहीं। जैसे बकर, लफ्ज बकर सिर्फ बकर पर सादिक आएगा और किसी पर नहीं। तो ये क्या है? जुजियात हैं ये। लेकिन याद रखो, ये है जुजी हकीकी, जो हकीकत में जुजी है। जुजी का क्या माना? जो कसीरीन पर सादिक ना आए। और ये भी हकीकत में एक ही फर्द पर सादिक आते हैं, कसीरीन पर सादिक नहीं आते। तो कुल्ली किसे कहते हैं? जो कसीरीन पर सादिक आए। और जुजी किसे कहते हैं? जो कसीरीन पर सादिक ना आए। दोहराओ भाई जुबान से जब मैं कहूं, खामोश ना बैठा करें। जुजी किसे कहते हैं? जो कसीरीन पर सादिक ना आए। लेकिन याद रखना, यह तारीफ है जुजी हकीकी की। इसी तरह एक जुजी इजाफी भी है, जुजी इजाफी उसे कहते हैं, यूं कहें, हर अखस तहतल आम जो है उसको जुजी इजाफी कहते हैं। हर अखस तहतल आम, या यूं कहो, हर खास तहतल आम जो होगा उसको क्या कहेंगे? जुजी इजाफी। हर खास तहतल आम, आम के जो नीचे जो भी खास हो। मसलन देखो, इंसान यह है कुल्ली, इंसान कुल्ली, और इसके अफराद जैद अमर बकर वगैरह, ये जुजी हकीकी भी हैं और जुजी इजाफी भी। जुजी हकीकी क्यों है? जुजी हकीकी किसे कहते हैं? जो कसीरीन पर सादिक ना है। जैद अमर बकर, ये कसीरीन पर सादिक नहीं आते। जैद का लफ्ज सिर्फ जैद पर सादिक आता है, अमर का लफ्ज सिर्फ अमर पर सादिक आता है। और नीज जुजी इजाफी भी हैं। जुजी इजाफी किसे कहते हैं? हर अखस तहतल आम, तो ये भी इंसान के तहत हैं, तो ये खास हुए, तो ये अखस तहतल आम, या यूं कहे खास तहतल आम हुए, तो ये जुजी इजाफी भी हैं। तवज्जो है। अब जरा इसे ऊपर आ जाओ, एक है हैवान, एक है इंसान। जब मैंने हैवान कहा तो इसमें इंसान भी आया, गाय बैल बकरी वगैरह चीजें भी आ गई, वो सब भी हैवान हैं। तो हैवान हुआ आम, इसमें इंसान, गाय बैल बकरी घोड़ा गधा सब इसके अंदर दाखिल हो गए। और एक है इंसान भाई, अब इंसान कसीरीन पर सादिक आता है, लेकिन हैवान की तरफ निस्बत करें तो ये खास है। हैवान में कौन कौन थे? इंसान के अलावा और जानवर भी थे। और इंसान में और जानवर नहीं। तो हैवान के मुकाबले में इंसान क्या हुआ? खास। ये क्या हुआ? खास हुआ। तो इंसान भी जुजी इजाफी है क्योंकि ये खास तहतल आम हुआ या अखस तहतल आम हुआ। बात समझ में आ गई। तो इंसान जुजी इजाफी तो है लेकिन जुजी हकीकी नहीं। जुजी हकीकी नहीं क्योंकि जुजी हकीकी तो किसे कहते हैं? जो कसीरीन पर सादिक ना आए, और इंसान तो कसीरीन पर सादिक आता है। बात समझ में आ गई। तो जैद अमर बकर वगैरह ये जुजी इजाफी भी हैं और जुजी हकीकी भी हैं। जुजी इजाफी क्यों? क्योंकि ये कसीरीन पर सादिक नहीं आते। और जुजी इजाफी क्यों? क्योंकि ये अखस तहतल आम है, इंसान के तहत हैं। और इंसान वो जुजी इजाफी तो है लेकिन जुजी हकीकी नहीं है। तो मालूम हुआ हैवान के तहत है इंसान और इंसान के तहत है जैद अमर बकर। तवज्जो से सुनो, जैद अमर बकर जब वो इंसान के अफराद हैं तो हैवान के भी अफराद हैं क्योंकि सब हैवान नातिक हैं ये सब। तो जैद अमर बकर इंसान के भी अफराद और हैवान के भी अफराद। मालूम हुआ हैवान के अफराद दो किस्म के हो गए। कौन कौन? कुछ कुल्लियात हैं, कुछ जुजियात हैं। कौन कौन से हैवान के अफराद कुल्लियात हैं? हैवान के तहत हैवान नातिक यानी इंसान भी आ गया, ये कुल्ली है, कसीरीन पर सादिक आता है। हैवान साहिल भी आ गया, साहिल हैवान साहिल घोड़े को कहते हैं, हिनहिनाने वाला हैवान। हैवान नाहिक भी आ गया यानी गधा भी आ गया, इसी तरह गाय बैल वगैरह वो भी आ गए भाई। गाय बैल को हैवान जुखुआर कहते हैं, बकरी है हैवान जुर्रुगा है, ये भी इसके अंदर आ गए। तवज्जो है। तो मालूम हुआ हैवान के अफराद दो किस्म के हो गए। कुछ तो कुल्लियात हैं, कौन कौन से? इंसान है, गाय बैल वगैरह, ये क्या हैं? कुल्लियात। और जैद अमर बकर ये इंसान के जब अफराद हैं तो हैवान के भी अफराद हैं। तो मालूम हुआ हैवान के कुछ अफराद जुजियात भी हैं यानी जुजी हकीकी भी हैं। तो हैवान के अफराद कितनी किस्म के हो गए? दो किस्म, कुछ कुल्लियात हैं कुछ जुजियात हैं। तवज्जो है। और हैवान जिन्स है, तवज्जो है। तो इस जिन्स के हिस्से या जिन्स के अफराद दो किस्म के हो गए, कुछ अफराद कुल्लियात हैं कुछ अफराद जुजियात। जो कुल्लियात हैं यकीनन उनमें कुल्लियात वाली खसूसियात होगी। कुल्ली किसे कहते हैं? जो कसीरीन पर सादिक आए। और कुछ जुजियात हैं उनमें जुजियात वाली खसूसियात होंगी यानी वो कसीरीन पर सादिक नहीं आते। तवज्जो है। तो हैवान के अफराद कितनी किस्म के हो गए? दो किस्म के। हैवान के अफराद दो किस्म के, कुछ भाई अफराद हैवान के अफराद। देखो हैवान के तहत क्या है? इंसान, गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, और यह सब कुल्लियात हैं। तो यूं कहेंगे ये भी हैवान के अफराद हैं लेकिन ये कुल्ली किस्म के अफराद हैं जो कुल्लियात हैं। और ये जैद अमर बकर ये भी हैवान के तहत है तो ये भी हैवान के अफराद लेकिन ये किस किस्म के अफराद हैं? ये जुजियात हैं यानी जुजियात हकीकिया हैं भाई। तो हैवान के अफराद कितनी किस्म के हो गए? दो किस्म के, कुछ कुल्लियात और कुछ जुजियात हो गए। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा साहिब जामी जवाब दे रहे हैं कि मतन में अनवा का लफ्ज आया इल्ला ये कि अनवा का इरादा किया जाए। अनवा का अब उसके अंदर आदद को भी दाखिल करना चाहते हैं तो कहते हैं यूं करो, अनवा से मुराद ले लो जिन्स के हिस्से। देखो ना, जिन्स के तहत अनवा होती है ना, हैवान जिन्स है और इसके तहत कौन है? इंसान, गाय, बैल, बकरी सब है या नहीं? तो हैवान जिन्स और है इंसान नौ है। ये तवज्जो है। मंतिक की बातें कुछ याद हैं या भूल गए सब? हैवान नातिक नौ है, हैवान साहिल नौ है, हैवान नाहिक नौ है, और खुद हैवान क्या है? जिन्स है। तवज्जो है। तो इन्होंने क्या कहा कि अनवा से क्या मुराद ले लें? जिन्स के हिस्से मुराद ले लें। और जिन्स के हिस्से कितनी किस्म पर हैं? कुछ कुल्लियात हैं कुछ जुजियात। जिन्स से मुराद हैवान है मसलन। तो देखो जिन्स के हिस्से मुराद हैं, इससे क्या मुराद है? जिन्स यानी हैवान। देखो हैवान एक जिन्स है और जिन्स के नीचे अफराद कितनी किस्म के हो गए? दो किस्म के हैं, कुछ कुल्लियात हैं कुछ जुजियात हैं। जैद अमर बकर भी किसके अफराद? हैवान के। और इंसान, गाय, बैल, बकरी ये भी किसके अफराद? यह भी हैवान मालूम हुआ। हैवान जो जिन्स है उसके अफराद दो किस्म के हो सकते हैं, कुल्लियात भी हो सकते हैं और जुजियात भी हो सकते हैं। तो यहां कहते हैं कि यहां जो अनवा का लफ्ज आया उससे जिन्स के हिस्से मुराद ले लो, यानी जिन्स के अफराद मुराद ले लो, और जिन्स के अफराद तो दो किस्म के हो सकते हैं, कुछ क्या होते हैं कुल्लियात और कुछ क्या होते हैं जुजियात, तो दोनों दाखिल हो गए। कुल्लियात के अंदर अनवा होती हैं। हैवान नाती क्या है? यह हैवान की एक नौ है। हैवान साहिल क्या है? यह हैवान की एक नौ है। हैवान नाहिक क्या है? यह हैवान की एक नौ है। तो जिन्स के ये वाले भी हिस्से हैं और इनकी खसूसियात कुल्लिया हैं। जाहिर सी बात है जो कुल्ली होगी उसकी कुल्ली वाली खसूसियात होंगी, वो कसीरीन पर सादिक आता है, और जुजी में जुजी वाली खसूसियात होंगी, वो कसीरीन पर सादिक नहीं आता। तो इसी तरह जैद अमर बकर ये भी हैवान के हिस्से हैं, हैवान के अफराद हैं, यानी वो हैवान को जहन में रखो फिर बात समझ में आएगी। यहां अनवा का लफ्ज आया, अनवा से क्या मुराद ले लो जेंस के हिस्से, अनवा से क्या मुराद ले लो जेंस के हिस्से, और जेंस के हिस्से कितनी किस्म पर दो, कुछ कुलियात कुछ जुजियात, तो कुलियात में अनवा आ गई और जुजियात में आदद आ गया। जुजियात के अंदर उनको आदद को शुमार किया जाता है, जैद एक है, अमर दूसरा है, बकर तीसरा है, बात समझ में आ गई। तो क्या दाखिल हो गए? अनवा भी दाखिल हो गई और आदद भी दाखिल हो गए। बात नहीं समझ में आई लगता है, फिर सुनो खुलासा फिर समझ लो। इन्होंने कहा मतन में सिर्फ यह आया कि अगर तमीज जिन्स हो तो उसको मुफरद रखेंगे, इल्ला ये कि अनवा का इरादा किया जाए, तो इश्काल हुआ कि अनवा के साथ आदाद को भी जिक्र करना चाहिए था। तो साहिबे जामी उसका जवाब दे रहे हैं कि यहां जो मतन में अनवा का लफ्ज आया इससे जिन्स के हिस्से मुराद ले लो, यानी वो जो जिन्स के तहत अनवा होती हैं। मंतिक में आपने पढ़ा है, मंतिक में आपने पढ़ा है कि जिन्स के तहत अनवा होती हैं। हैवान के तहत क्या है? इंसान, गाय, बैल, बकरी, यह सब क्या है? ये हैवान के तहत हैं। हैवान है जिन्स और ये हैं अनवा, तो ये जिन्स के हिस्से हो गए। और इसी के तहत क्या हो गए? जैद अमर बकर, वो भी इस उसी जिन्स के तहत आ जाती हैं। तो गोया जिन्स के हिस्से दो किस्म के हो गए, कुछ में खसूसियात कुल्लिया हैं क्योंकि वो कुलियात हैं, और कुछ में खसूसियात शख्सिया हैं क्योंकि वो शख्सियात या जुजियात हैं। तो लिहाजा दोनों दाखिल हो गए। क्या हो गए? दोनों उसके अंदर दाखिल हो गए। तो अनवा से क्या मुराद? जिन्स के हिस्से, और जिन्स के हिस्से जैसे अनवा होती हैं ऐसे अफराद भी होते हैं, वो भी जिन्स के हिस्से हैं। तो जिन्स जो है मसलन हैवान है, इसके तहत हैवान नातिक, हैवान साहिल, हैवान नातिक, ये कुलियात भी आ गई, और इसी के तहत जैद अमर बकर भी आ गए। और ये जो कुलियात हैं हैवान नातिक हैवान साहिल, इनमें किस किस्म की सिफात होंगी? कुल्ली सिफात होंगी, क्योंकि कुल्ली कहते ही वो उसको है जिसको जो कसीरीन पर सादिक आए, और नीचे जो अफराद हैं जैद अमर बकर वगैरह, इनमें शख्सी खसूसियात होंगी, यानी हर शख्स की अपनी अपनी खसूसियत है। जैद के मसलन एक खास किस्म की आंखें होंगी, खास किस्म के बाल होंगे, खास किस्म का चेहरा होगा, ये उसकी शख्सी खसूसियात हैं। इन्हीं चीजों से तो आप जैद को अमर से पहचानते हैं, फर्क करते हैं, वरना जैद की भी दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो हाथ दो पांव, बकर भी इसी तरह है, खालिद भी इसी तरह है। तो ये आप इनको एक दूसरे से कैसे फर्क करते हैं कि हर एक की शख्सी खसूसियात होती हैं, हर एक की आंखें खास किस्म की, हर एक की नाक खास किस्म की, चेहरा खास किस्म का, कद खास किस्म का, हाथ पांव खास किस्म के, ये है शख्सी खसूसियात। और कुछ क्या होती हैं? कुल्ली की खसूसियात, जैसे हैवान नातिक ये एक कुल्ली है, तो इसका हर फर्द क्या होगा? हैवान होगा। हर फर्द क्या होगा? नातिक होगा। हर फर्द के दो हाथ होंगे, दो आंखें होंगी, दो पांव होंगे, क्योंकि हैवान नातिक सब इसी तरह के होते हैं। तो कुल्ली की कुल्ली खसूसियात होती हैं और जुजी की जुजी खसूसियात, यानी शख्सी खसूसियात होती हैं। तो मतन में क्या आया? अनवा। अनवा से क्या मुराद ले लो? उस जिन्स के हिस्से मुराद ले लो। क्या मुराद ले लो? जिन्स के हिस्से मुराद ले लो। जैसे हैवान है, इस हैवान के हिस्से किस किस्म के हैं? कुछ कुल्लियात हैं और कुछ जुजियात हैं। कुल्लियात के अंदर अनवा होती हैं, जैसे हैवान नातिक एक नौ, हैवान साहिल एक नौ, हैवान नातिक एक नौ, तो कुलियात के अंदर अनवा आ गई, और नीचे जो अफराद जो शख्सी खसूसियात के साथ हैं उनमें हदद बयान होता है, एक फर्द है या दो हैं या तीन हैं या चार हैं, तो दोनों इसमें दाखिल हो गए। बात समझ में आ गई, अनवा से मुराद जिन्स के हिस्से हैं, और जिन्स के तहत जैसे अनवा होती हैं इसी तरह अफराद भी होते हैं। जैसे हैवान है, मंतिक के अंदर आपने पढ़ा है हैवान क्या है, जिन्स, और इंसान क्या है, इंसान नौ है। जिन्स किसे कहते हैं, वो कुल्लियुन मकूलुन अला कसीरीना मुख्तलिफीन बिल हकायक, जिनकी हकीकतें मुख्तलिफ हों। तो हैवान का इतलाक इंसान पर भी होता है, गाय बैल बकरी वगैरह पर भी होता है, और सबकी हकीकतें अलग अलग हैं, और इंसान के भी अफराद बहुत ज्यादा, गाय बैल के भी अफराद बहुत ज्यादा, घोड़ा गधा वगैरह उनके भी अफराद बहुत ज्यादा। तो देखो ये सारे हैवान के अफराद हैं, लेकिन किस किस्म के अफराद हैं, कुल्लियात हैं। इंसान भी क्या है, कुल्ली, कुल्ली किसे कहते हैं, जो कसीरीन पर सादिका है, तो इंसान भी हैवान का फर्द लेकिन यह कुल्ली है, गाय बैल ये भी क्या है, हैवान का फर्द लेकिन ये भी कुल्ली है, घोड़ा ये भी क्या है, हैवान का फर्द लेकिन ये भी कुल्ली है, गधा ये भी हैवान का फर्द लेकिन ये कुल्ली है। तो मालूम हुआ जिन्स के बाज अफराद ऐसे होते हैं जो कुल्लियात होते हैं, और इसी तरह इंसान के अफराद जैद अमर बकर हैं, जब ये जैद अमर बकर ये इंसान के अफराद हैं तो ये हैवान के भी अफराद हुए, क्योंकि ये सब हैवान नातिक हैं। मालूम हुआ जिन्स के बाद अफराद ऐसे होते हैं जो कुल्लियात नहीं होते बल्कि जुजियात होते हैं, यानी कसीरीन पर वो सादिक नहीं आते। कुल्ली तो उसे कहते हैं जो कसीरीन पर सादिक आए, जुजी वो है जो कसीरीन पर सादिक ना आए। अब जैद सिर्फ जैद पर सादिक आता है, किसी और पर नहीं, अमर सिर्फ अमर पर सादिक आता है, किसी और पर नहीं, बकर सिर्फ बकर पर सादिक आता है, किसी और पर नहीं। तो ये भी हैवान के अफराद, मालूम हैवान के कुछ अफराद वो हैं जो कुल्लियात हैं, और इसी तरह हैवान के कुछ अफराद वो हैं जो जुजियात हैं। भाई तो हैवान के अफराद दो किस्म के हो गए, और हैवान क्या है, जिन्स। तो जिन्स के गोया दो किस्म के अफराद हो गए, कुछ कुल्लियात हैं और कुछ जुजियात हैं। तो यहां वो जिन्स के हिस्से मुराद ले लो, यानी जिन्स के अफराद मुराद ले लो। तवज्जो है, मतन में क्या आया, इल्ला अन तुक्सद अल अनवा, अनवा से क्या मुराद ले लो, जिन्स के हिस्से, और हिस्सों से क्या मुराद है, अफराद, जिन्स के अफराद मुराद ले लो। तो इश्काल खत्म हुआ, क्योंकि जिन्स के अफराद मुराद ले लिए। तो जिन्स के अफराद तो दो किस्म के हैं, कुछ कुलियात हैं कुछ जुजियात। कुलियात के अंदर वो अनवा आ गई, और वो जो जुजियात हैं उनके अंदर आदद आ गया, कि वहां आदद के साथ उनको जिक्र किया जाता है कि जैद अमर बकर दो हैं, तीन हैं, चार अफराद हैं, कितने हैं। बात समझ में आ गई। तो इल्ला अन तुक्सद अल अनवा, इस अनवा से क्या मुराद ले लिया जाए, जिन्स के हिस्से यानी जिन्स के अफराद मुराद ले लिए जाए, और जिन्स के अफराद तो दो किस्म के हैं, कुछ कुल्लियात हैं यानी वो अनवा हैं, और कुछ जुजियात हैं, और वो क्या हैं, अफराद, वहां अदद बयान होगा। तो दोनों दाखिल हो गए, इल्ला अन तुक्सद अल अनवा, इसी अनवा में आदाद भी आ गए और खुद अनवा भी आ गई। बात समझ में आ गई। देखिए भाई कहते हैं वयुमकिनु अन युजाबा अन्हु, और यह मुमकिन है कि इससे यह जवाब दिया जाए इस इश्काल से, भी अन्नल मुराद बिल अनवाई, के अनवा से मुराद जो है हिससुल जिन्सी, जिन्स के हिस्से हैं यानी जिन्स के अफराद हैं, और जिन्स के अफराद दो किस्म के, कुछ जुजी इजाफी होंगे कुछ जुजी हकीकी होंगे। तो कहते हैं इससे मुराद जिन्स के हिस्से हैं, सवा उनका नत बिल खसूसियात कुल्लियति, बराबर है कि वो खसूसियात कुल्लिया के साथ हों। तो इसमें अनवा दाखिल हो गई, अव शख्सियति या वो खसूसियात शख्सिया के साथ हों, तो इस सूरत में अदद आ गया, अदद आ गया। आगे देखिए कहते हैं वयुजमाउ अयूरदु तमीज़ु अला मा फौकल वाहिदि जवाज़न हैसु लम युक्सदिल वाहिदु फी गैरिही ऐ फी गैरिल जिन्सी। हां अगर तमीज जिन्स के अलावा हो, मैंने बताया, तो फिर अगर आपका तस्निया या जमा का इरादा है तो फिर उसके मुताबिक आप ला सकते हैं। तो कहते हैं वयुजमाउ अयूरदु तमीज़ु अला मा फौकल वाहिदि, वयुजमाउ और जमा लाई जाएगी, क्या माना जमा लाई जाएगी, अयूरदु तमीज़ु अला मा फौकल वाहिदी, तमीज को लाया जाएगा मा फौकल वाहिद पर। मैंने बताया यहां भी जमा से क्या मुराद है, जमाए लुगवी मुराद है, ये माफौकल वाहिद यानी तस्निया को भी शामिल है। तो जो है इन्होंने तो कहा ना जमा लाई जाएगी, क्या माना तस्निया नहीं लाएंगे, कहते हैं नहीं यहां जमा से मुराद जमाई लुगवी है, ये जो तस्निया को भी शामिल होता है और जो किसको कहते हैं माफौकल वाहिद, जो वाहिद से ऊपर है वो जमा है, तो उसमें तस्निया भी आ गया और जमा हकीकी भी आ गए। तो कहते हैं वयुजमाउ अयूरदु तमीज अला माफौकल वाहिदी, और तमीज को जमा लाएंगे यानी माफौकल वाहिद पर लाएंगे, जवाजन और ये लाना जायज है, हैसु लम युक्सदिल वाहिदु, तो यहां मकान के माना में हैसु यानी उस जगह पर लम युक्सदिल वाहिदु जहां वाहिद का इरादा ना हो। भाई इधर देखिए, तमीज अगर जिंस थी तो उसको हमेशा मुफरद लाते हैं, इल्ला ये कि आप अनवा या अदद बयान करना चाहें तो फिर जिंस होने के बावजूद आप उसको तस्निया और जमा ला सकते हैं। और अगर तमीज इसके अलावा हो यानी जिंस ना हो, जैसे रजुल या फरस है, आप उसको तमीज लेकर आते हैं, तो फिर अगर आप तस्निया या जमा का इरादा करते हैं उससे, तो फिर आप तस्निया और जमा भी ला सकते हैं। मसलन मैं कहता हूं इंदी मिस्लु ज़ैदिन रजुलन, इंदी मेरे पास है मिसलु ज़ैदिन ज़ैद जैसा, रजुलन एक आदमी, ये रजुलन तमीज है मिसलु ज़ैदिन से, ये मिसल में इबहाम था, मेरे पास ज़ैद जैसा है, भाई क्या है ज़ैद जैसा, मैंने कहा रजुलन यानी एक आदमी, मेरे पास ज़ैद जैसा एक आदमी है। अब ये रजुल ये तो जिंस नहीं है, तवज्जो है, तो इस सूरत में अगर मेरा मुफरद का इरादा है फिर तो मुफरद ही रखेंगे, हां अगर मेरा मुफरद का इरादा नहीं है तस्निया का इरादा है तो फिर तस्निया ला सकते हैं, जमा का इरादा है तो जमा ला सकते हैं। तो अब अगर मेरा दो आदमियों का इरादा है तो मैं यूं कहूंगा इंदी मिसलु ज़ैदिन रजुलैनी, मेरे पास ज़ैद के मिसल दो आदमी हैं, या मैं जमा का इरादा करता हूं तो फिर जमा लाऊंगा इंदी मिसलु ज़ैदिन रिजालन, मेरे पास ज़ैद के मिसल कई रजुल हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहां रजुल जिंस नहीं है। और हां इसमें अगर आपने मुफरद का इरादा किया है फिर तो वाहिद रखेंगे, लेकिन अगर तस्निया जमा का इरादा किया है तो आप तस्निया और जमा ला सकते हैं। यह माना है कि जवाजन के ये लाना जायज है, हैसु लम युक्सदिल वाहिद, उस जगह जहां वाहिद का इरादा ना हो, क्योंकि वाहिद का इरादा हो फिर तो मुफरद ही लाएंगे, फी गैर ही ऐ फी गैर जिंसी गैर जिंस में, नहवु मिसाल के तौर पर इंदी ईदुलन सौबैनी औ अस्वाबा, ईदुलन गठड़ी को कहते हैं भाई, कपड़ों की गठड़ी। अब देखो मैं कहता हूं इंदी ईदुलन, मेरे पास एक गठड़ी है, आगे मैं तमीज लाता हूं सौबन, इंदी ईदुलन सौबन, ये सौबन ने आकर इबहाम को दूर कर दिया कि ये गठड़ी किस चीज की है, कपड़ों की है, तो इंदी ईदुलन सौबन, मेरे पास गठड़ी है बैतबार कपड़ों के, तो ये सौब ये जींस नहीं है, जब जींस नहीं है तो फिर अगर मैं तस्निया और जमा का इरादा करूं तो तस्निया और जमा ला सकता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं एक गठड़ी है लेकिन दो कपड़े हैं उसमें, तो मैं क्या कहूंगा इंदी ईदुलुन सौबैनी, और ज्यादा बतलाने का इरादा है तो फिर जमा भी ला सकते हैं, इंदी ईदुलुन अस्वाबन भी कह सकते हैं। तो इंदी ईदुलुन अस्वाबन, मेरे पास एक गठड़ी है बैतबार कई कपड़ों के, यानी कई कपड़ों पर वो मुश्तमिल है। भाई आगे देखिए, भाई मतन मतन पहले देखिए, कहते हैं सुम्म इन कान बि तनवीन इन औ बि नून इत्तस्नियति जाज़तिल इज़ाफतु व इल्ला फला, सुम्म इन कान बि तनवीन इन औ बि नून इत्तस्नियति, फिर अगर वो जो मुफरद है जिससे आगे तमीज आ रही है, जिससे आगे फिर वो मुफरद अगर ताम हो रहा है तनवीन या नूने तस्निया के साथ, तो जाज़तिल इज़ाफतु, तो इज़ाफत जायज है। इधर देखिए भाई, मैंने आपको बतलाया तमीज को नसब जो है ये इसमें ताम देता है, और ये इसम ताम होता है कितनी चीजों के जरिए, तीन चीजें हैं, एक है तनवीन और एक है तस्निया और जमा वाला नून और एक है इज़ाफत। यूं करें तस्निया और जमा वाले नून को भी जरा अलग अलग कर लें, गोया चार चीजें हैं जिनके जरिए इसम ताम होता है, एक है तनवीन, एक है नूने तस्निया, एक है नूने जमा और एक है इजाफत। अब आपको बतलाएंगे, आपको बतलाएंगे कि कौन सी सूरतों में उस इसमें ताम की इजाफत तमीज की तरफ जायज है और किन में जायज नहीं। इंदी रितलुन जैतन, ये रितलुन ये है वो मुफरद, यह है वो इसमें ताम जिससे आगे जैतन तमीज आ रही है, तो आपको बतलाएंगे किन सूरतों में आप इस रितल की इजाफत तमीज यानी जैद की तरफ कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। तो फरमाते हैं कि अगर वो इसम ताम हो रहा है तनवीन के जरिए या इसम वो ताम हो रहा है नूने तस्निया के जरिए, तो इस सूरत में फिर उसकी इजाफत तमीज की तरफ जायज है। भाई क्या बात हुई, अगर वो इसम जो तनवीन से माकबल है वो किसके जरिए ताम हो रहा है, तनवीन के जरिए ताम हो रहा है या नूने तस्निया के जरिए, तो फिर उसकी तमीज की तरफ इजाफत भी जायज है। इंदी रितलुन जैतन, ये रितलुन किसके जरिए ताम हो रहा है, तनवीन के जरिए, लिहाजा इसकी इजाफत जैद की तरफ यानी तमीज की तरफ जायज है। आप यूं भी कह सकते हैं इंदी रितलु जैतिन। इसी तरह इंदी मनवानी समनन, ये मनवानी किसके जरिए ताम हो रहा है, नून तस्निया के जरिए, लिहाजा यहां पर तमीज की तरफ इसकी इजाफत जायज है, लिहाजा आप इजाफत करेंगे और वो नून गिर जाएगा। इंदी मनवा समनिन, जबकि दो सूरतों में इजाफत नहीं करेंगे। कौन सी दो सूरतें, एक वो सूरत जिसके अंदर वो इसम ताम हो रहा है नूने जमा के जरिए, और एक वो सूरत जिसमें वो इसम ताम हो रहा है इजाफत के जरिए, तो इन दो सूरतों में जायज नहीं इजाफत। तवज्जो है, हासिल कलाम क्या हुआ कि अगर वो इसम ताम हो रहा है तनवीन के जरिए या नूने तस्निया के जरिए तो फिर इजाफत जायज है। लेकिन इसमें एक और बात भी याद रखना, वो तनवीन ऐसी हो जो जाहिर होनी चाहिए, जाहिर होनी चाहिए। मैंने आपको बतलाया था कि कभी कभार यह तनवीन मुकद्दर होती है, जैसे अहदा आशारा किताबन, देखो अहदा आशारा पर तनवीन जाहिर नहीं है बल्कि मुकद्दर है। इसी तरह कम रजुलन, ये कम पे भी तनवीन जाहिर नहीं है, तो जब तनवीन जाहिर हो तब उस वक्त उस इसमें ताम की तमीज की तरफ इजाफत जायज है, और अगर वो तनवीन मुकद्दर है जैसे अहदा आशारा किताबन या कम रजुलन तो उस सूरत में इजाफत जायज नहीं है। तो तनवीन हो, और कौन सी तनवीन हो, जाहिर हो भाई। तो कहते हैं सुम इन कान बी तनवीन इन औ बिनून तस्नियति, फिर अगर वो मुफरत जो है तनवीन या नूने तस्निया के साथ ताम हो रहा हो तो जाजतिल इजाफतु, तो उसकी इजाफत जायज है यानी तमीज की तरफ। व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो, मैंने आपको बतलाया था कि इल्ला से पहले वो आ जाए तो ये इल्ला हर्फ इस्तिस्ना नहीं है बल्कि ये इन और ला से मुरक्कब है। असल में क्या था, व इल्लम यकुन का जालिक, और अगर ऐसा ना हो फला, तो फिर इजाफत जायज नहीं। भाई देखिए भाई किताब पर, अब शरा के साथ देखिए, कहते हैं सुम इन काना अयल मुफरदुल मिकदारु तामन बि तनवीन इन औ बिनून तस्नियति, फिर अगर वो मुफरद मिकदार ताम हो तनवीन या नूने तस्निया के साथ। तवज्जो है भाई, इबारत की बात करने लगे हैं, आगे साहिब जामी इसको समझ लें। मतन में था सुम इन कान बी तनवीन इन औ बिनून तस्नियति, साहिब जामी ने दरमियान में क्या कहा, अयल मुफरदुल मिकदारु ताम मन बी तनवीन इन औ बिनून तस्नियति, बतलाना ये चाहते हैं कि ये काना नाकिसा है और इसके अंदर हुआ जमीर उस मुफरद मिकदार को राजे है जिसका पीछे जिक्र हुआ था, और फिर ये जो बितनवीन इन औ बिनून तस्नियति ये काना की खबर है और ये जार मजरूर है और जार मजरूर के लिए कोई ना कोई मुतअल्लक चाहिए, तो वो यहां ताम मन निकाल लिया, ताम मन बितनवीन इन औ बिनून तस्नियति, और ताम मन मनसूब निकाला इसलिए क्योंकि काना की खबर है और काना की खबर मनसूब होती है। तो इबारत क्या बन गई, सुम इन कानल मुफरदुल मिकदारु तामन, फिर वो मुफरद मिकदार अगर ताम हो बी तनवीन इन औ बिनून तस्नियति, तनवीन या नून तस्निया के जरिए, तो ये काना नाकिसा है। आगे आपको बतलाएंगे कि इसमें यह भी एहतमाल है कि ये काना को तामा बना दें। मैंने आपको बतलाया था कि काना बाज़ औक़ात तामा आता है, यानी वैसे काना नाकिसा जो है इसको नाकिसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसम के साथ साथ खबर का भी तकाजा करता है। आम अफाल जो है ना, आम अफाल वहां सिर्फ फाइल पर बात पूरी हो जाती है। जराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की, बात पूरी हो गई। भाई किसकी पिटाई की, उसके जिक्र की कोई जरूरत नहीं है, करें या ना करें आपकी मर्जी है। मैं आपको नहीं बताना चाहता उसने किसकी पिटाई की है, तो मैं मफूल को हजफ कर लेता हूं। तो जराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की, बात पूरी है। जबकि अफाले नाकिसा ऐसे नहीं है, उनमें कमी है, वो नाकिस है, वो इसम के साथ साथ एक खबर भी चाहते हैं। तो काना जैदुन काइमन, जैद खड़ा था। देखो काइमन में लाया तो बात पूरी हुई, उसके बगैर बात पूरी नहीं थी। लेकिन कभी काना तामा भी आता है, काना तामा वो बमाने सबता के होता है, जैसे काना मतरुन ऐसा बता मतरुन, बारिश हुई, बारिश हुई, यहां किसी खबर वगैरह की जरूरत नहीं, तो इसको काना तामा कहते हैं। और याद रखो काना तामा का तर्जमा जब करते हैं तो उमूमन वुजीदा और यूजदू के साथ करते हैं। जहां कहीं शुरुहात में आपको काना या यकूनू के बाद वुजीदा या यूजदू जैसा लफ्ज मिल जाए, आप समझ जाएं कि शारह यह बतलाना चाहते हैं कि यह काना तामा है, नाकिसा नहीं। यहां सिर्फ फाइल पर बात पूरी हो रही है, यहां किसी खबर वगैरह की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो शारह जामी आपको बतलाएंगे कि यहां पर यह काना को हमने नाकिसा बनाया, लेकिन इसको काना तामा भी बनाया जा सकता है। फिर क्या माना होगा, कहते हैं फिर जरा मतन पे नजर रखें। सुम इन कान अभी तनवीन इन अबिनून तस्नियती, पहले क्या बनाया, काना को नाकिसा, इसके अंदर हुआ समीर किसको राजे की, मुफरद मकदार को, और भी तनवीन इन अबिनून तस्नियती, इसको काना की खबर बनाया। इसलिए इसलिए क्योंकि तनवीन और नूने तस्निया किस में आते हैं, अभी पीछे बताया था तनवीन और नूने तस्निया, बात हुई थी अभी कि वो इसम ताम होता है किसके जरिए, तनवीन या नूने तस्निया के जरिए, शारह जामी ने आपको बतलाया था। तो वो तनवीन और नूने तस्निया उस मुफरद मकदार में आएंगे, खुद तमीज में नहीं आएंगे। भाई तमीज के अंदर की तो तनवीन और नूने तस्निया की बात नहीं हो रही, तनवीन और नूने तस्निया के जरिए तो कौन ताम होता है, वो जो माकबल में इसमें ताम है। तो इसलिए काना की जमीर किसको राजे की, मुफरद मकदार को, और भी तनवीन इन और बिनूनी तस्निया को, इसको काना की खबर बनाया। लेकिन एक सूरत यह भी है कि काना की जमीर तमीज को राजे कर दें, लेकिन इस सूरत में फिर काना तामा बनाएंगे, तामा, काना की जमीर तमीज को राजे कर दें, और फिर आगे जो जार मजरूर आए इसको हाल बना दें काना की खबर नहीं, क्योंकि काना तामा है। फिर क्या माना होगा, सुम इन काना आई सुम इन वुजिदा तमीज, अगर तमीज पाई जाए इस हाल में कि बी तनवीन इन और बिनून तस्नियत, वो किसके साथ हो, तनवीन या नून तस्निया, यानी इधर देखिए तमीज इस हाल में है कि उसके साथ तनवीन है माकबल वाले इसम में, तो तनवीन तमीज की नहीं मुराद, बल्कि तमीज माकबल वाले, माकबल वाले इसम की। तनवीन जो है तमीज की, तनवीन की बात नहीं हो रही, बल्कि किसकी तनवीन की बात हो रही है, माकबल वाले इसम की। इसी तरह नूने तस्निया में जो है वो तमीज के अंदर नहीं, बल्कि किसका नूने तस्निया मुराद है, माकबल वाले इसम का। तो इबारत क्या बन गई, सुम इन काना बी तनवीन इन सुम इन वुजिदा तमीज, अगर वो तमीज पाई जाए इस हाल में कि किसके साथ हो, इस हाल में कि वो तनवीन के साथ हो माकबल वाले इसम की, या इस हाल में कि वो नूने तस्निया के साथ हो माकबल वाले इसम की। बात समझ में आ गई। तो दोनों इबारतें दुरुस्त हैं, और वजह ये दो ताबीरें बतलाने की जरूरत क्या थी, बस एक सूरत में कलाम ठीक हो गया उसी को जिक्र करते। वजह यह कि माकबल में देखो, जरा इबारत देखो, मतन देखो, पीछे आया था फयुफरदू, युफरदू के अंदर जमीर किसको राजे है, तमीज को। फिर आगे आया था इनकाना जिनसन, इस काना के अंदर भी जमीर किसको राजे, तमीज को राजे। आगे आया था वह युजमाऊ के अंदर भी जमीर किसको राजे, तमीज को। फिर सुम इनकाना जो आगे आया, तो जाहिर यही लगता था कि इसमें भी जमीर किसको राजे होनी चाहिए, तमीज को राजे होनी चाहिए। तो वो माना भी कर दिया, तमीज को राजे कर दी, लेकिन इस सूरत में काना को तामा बनाना पड़ेगा। लेकिन जाहिर यही है कि इस काना को नाकिसा बनाने वाला इहतेमाल ज्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि तमीज की तनवीन या नून तस्निया यहां मुराद नहीं है, बल्कि किसकी तनवीन और नून तस्निया मुराद है, माकबल वाले इसमें ताम की। लिहाजा कौन सा इहतेमाल बेहतर हुआ? पहला इहतेमाल जो साहिब जामी ने जिक्र किया कि काना को नाकिसा बनाया। तो फिर देखिए, कहते हैं सुम इन काना अयल मुफरदुल मिकदार उताम मन बी तनवीन इन औ बिनून तस्नियती, फिर अगर वो मुफरद मिकदार वो ताम हो रहा हो तनवीन या नून तस्निया के जरिए, अविल माना या माना ये है, देखो अब दूसरी इबारत शारह जामी जिक्र करेंगे, इन वुजीदा तमीज हूं, देखो वुजीदा से क्या बतलाया कि काना को तामा बना लें और जमीर जो है तमीज को राजे कर दें। कहते हैं इन वुजीदा तमीज, अगर तमीज पाई जाए मुतलब्बिसन बि तनवीन इन, ये मुतलब्बिसन बतलाना चाहते हैं कि ये हाल वाके है भाई, क्योंकि जार मजरूर है ना, और मारिफा के बाद जार मजरूर आए तो क्या बनता है? अमूमन हाल बनता है। नकेरा के बाद जार मजरूर आए तो सिफत, और मारिफा के बाद जार मजरूर आए तो हाल बनता है। तो यहां हाल बना रहे हैं बितनवीन इनको, कहते हैं अविल माना या माना यह है इन वुजिदत तमीज, अगर वो तमीज पाई जाए मुतलब्बिसन बितनवीन मुफरदी औ बिन्नून लती लितस्नियती, कि इस हाल में कि वो तमीज जो है मिली हुई हो बितनवीन मुफरदी, किसके साथ? उस मुफरद की तनवीन के साथ, औ बिन्नून लती लितस्नियती, यह उस नून के साथ जो तस्निया के लिए हो, अगर तमीज ऐसी हो, फइन्नहु लम्मा तम्मल इस्मु बिहिमा, इसलिए क्योंकि इसम वो इसम जो माकबल में है जब वो ताम हो गया इस तनवीन या नूने तस्निया के जरिए, इक्तज़त तमीज़ा, तो फिर वो तमीज का तकाजा करता है, तो फिर जाज़तिल इज़ाफ़तु, तो उस सूरत में इजाफत जायज है। कौन सी दो सूरतों में? जब माकबल वाला इसम ताम हो रहा हो तनवीन या नूने तस्निया के जरिए, तो फिर तमीज की तरफ इजाफत भी जायज है। लेकिन साथ मैंने बताया यह भी याद रखना कि वह तनवीन जाहिर होनी चाहिए, मुकद्दर नहीं होनी चाहिए। तो जाज़तिल इजाफतु, तो इजाफत जायज है, ऐ इजाफतुल मुफरदिल मिकदारी इला तमीज़ी, यानी उस मुफरद मिकदार की इजाफत तमीज की तरफ यह जायज है। इजाफतन बयानियतन, और यह इजाफत बयानी होगी, ये इजाफत मैंने आपको बतलाया था, इजाफत बयानी इसे कहते हैं। इधर देखिए, एक है मुजाफ, फिर आगे आता है मुजाफिले, तो ये जो मुजाफिले होता है ना, ये मुजाफ का बयान करता है भाई। आम तौर पर मुजाफ अलग होता है, मुजाफिले अलग। गुलाम जैदिन, गुलाम की जात अलग है, जैद की जात अलग है, लेकिन बाज औकात जो आगे मुजाफिले होता है वो कोई अलग चीज नहीं होती, वो उसी मुजाफ की वजाहत कर रहा होता है, उसी को बयान कर रहा होता है। तो इस सूरत में दोनों एक ही चीज है गोया, इसको इजाफत बयानी कहते हैं, इसको इजाफत जैसे मसलन इंदी रेतलोन जैतन, इंदी रितलोन जैतन, ये रितल की जरा इजाफत करें, ये रितल तनवीन से ताम हो रहा है, तो अब जैद की तरफ इजाफत कर दें, इंदी रितलु जैतिन, इंदी रितलु जैतिन। अब देखो रितल मुजाफ, जैतिन मुजाफु नीले, और देखिए आप गौर करें, ये जैद उसी रितल की वजाहत कर रहा है कि ये रितल किस चीज का है? जैद का है, किसी और चीज का नहीं। इसको कहते हैं इजाफत बयानी। तो कहते हैं कि फिर इजाफत जायज है, इजाफतन बयानियतन, कौन सी इजाफत होगी? ये इजाफत बयानी भी इसकाती तनवीनी व नून तस्नियती, तनवीन और नून तस्निया को साकित करते हुए, इसलिए क्योंकि इजाफत के वक्त तनवीन भी गिर जाती है और नून तस्निया भी गिर जाता है, जवाजन, और ये इजाफत जायज है भाई, ये इजाफत जायज है, वाजिब नहीं, तवज्जो है। तो कहते हैं जवाजन शायअन कसीरन, ये जायज है और शाय है कसरत के साथ भाई। भाई मतन में तो आया जाजतिल इजाफतु, अगर ये सूरतें हुई तो इजाफत जायज है, व इल्ला फला, और अगर ऐसा ना हो तो इजाफत जायज नहीं। तवज्जो है, कितनी सूरतों में इजाफत जायज? दो सूरतों में, जब वो इसम ताम हो किसके जरिए? तनवीन के जरिए या नूने तस्निया के जरिए। और कौन सी दो सूरतों में नहीं जायज? जब वो ताम हो नूने जमा के जरिए, या जब वो ताम हो इजाफत के साथ, उन दो सूरतों में इजाफत जायज नहीं। लेकिन उसमें भी आपको बताएंगे, उसमें भी बताएंगे कि नूने जमा की सूरतों में किल्लत के साथ जायज है, किल्लत के साथ, यानी अरबों ने इस्तेमाल किया है लेकिन निहायत कलील है, निहायत कलील है। तो वह इल्ला फला लफ्जों से क्या पता चल रहा है कि बिल्कुल सिरे से जायज ही नहीं। ऊपर कहा जाजतिल इजाफतु व इल्ला फला, वरना जायज नहीं। लेकिन आगे शारह जामी क्या बताएंगे कि यूं ना कहें बिल्कुल नहीं जायज, बल्कि आला किल्लत जो है यह जायज है। तो जब मुकाबिल में आला किल्लत जायज है तो ऊपर भी तो जाजतिल इजाफत, ऊपर भी जवाज, नीचे भी जवाज आ गया। तो दोनों में फर्क बतलाने के लिए कि वो जो है वो आला सबीलिल किल्लत जायज है और ये आला सबीलिल कसरत जायज है। भाई बात समझ में आ गई, ताकि दोनों में तकाबुल आ जाए। भाई तो ये माना है जवाजन शायअन कसीरन, और ये जायज है शाय है कसरत के साथ, यानी खूब कसरत से ये जायज है। लिहुसूलिल गरजी, गरज के हासिल होने की वजह से। भाई देखिए ये इस सूरत में इजाफत क्यों जायज है, जब इसम ताम हो रहा हो तनवीन या नूने तस्निया के साथ, तो आपको बतलाएंगे वजह यह कि जब आप इजाफत करेंगे तो मकसद भी हासिल हो जाएगा और तख़फीफ भी आ जाएगी, क्योंकि तनवीन या नूने तस्निया भी गिर जाएगा। जब तनवीन गिर गई या नूने तस्निया गिर गया तो लफ्जों में भी तख़फीफ आ गई और नीज मकसद भी हासिल हो गया, क्योंकि मकसद क्या था। मसलन मैं कहता हूं इंदी रेतलुन जैतन, ये रेतलुन में इबहाम था, जैतन तमीज ने आकर इबहाम को दूर कर दिया। जब मैं इजाफत करूंगा इंदी रेतलु जैतिन, तो रेतल से तनवीन गिर गई, देखो तख़फीफ भी आ गई। और नीज ये इजाफत भी कौन सी है, इजाफत बयानी है, जिसमें मुजाफिल बयान करता है किसका, मुजाफ का, तो वो बयान भी आ गया। रितल में इबहाम था, वो आगे मुजाफिल उस इबहाम को भी दूर कर देगा और लफ्जों में भी तख़फीफ आ गई, दोनों काम हो गए जी। तो ये माना है लिहुसूलिल गरजी, गरज के हासिल होने की वजह से। वह हुआ रफ़ुल इबहाम, ये दरमियान में बतला दिया कि वह गरज क्या है, तमीज लाने का मकसद क्या है, इबहाम को दूर करना है। तो जब इजाफत कर दोगे वो गरज फिर भी हासिल है, इबहाम दूर हो रहा है। बिजालिका, इस बिजालिका को जोड़ें हुसूल के साथ, दरमियान में बताया वो गरज क्या है, तवज्जो है गरज क्या है, फिर दोहराओ वह हुआ रफ़ुल इबहाम, इबहाम को दूर करना है। और इजाफत की सूरत में भी इबहाम दूर होगा कि नहीं होगा, इजाफत बयानिया तो इबहाम भी दूर हो जाएगा। तो कहते हैं लिहुसूलिल गरजी बिजालिका, जरा यह वह हुआ रफ़ुल इबहाम को हटा दें, लिहुसूलिल गरजी बिजालिका मा तख़फीफी, इसलिए क्योंकि इसके जरिए गरज भी हासिल हो जाएगी, मा तख़फीफ साथ तख़फीफ के, गरज भी हासिल हो गई और तख़फीफ भी आ गई। आगे देखिए नहव रितलु ज़ैतिन, देखो इजाफत कर दी, तख़फीफ भी आ गई और इबहाम भी दूर हो गया, मुज़ाफ़िले ने बयान कर दिया। व मन व समनिन, आगे देखिए व इल्ला अय व इल्लम यकुन बि तनवीन औ बि नून तस्नियती, और अगर वो मुफरद मिकदार तनवीन या नून तस्निया के साथ न हो, तनवीन और नून तस्निया के साथ न हो तो कितनी सूरतें रह गईं, दो, वो दोनों बयान कर रहे हैं। यकून बिनू निल जमा अविल इजाफती, बई सूरत के वो जो मुफरद मिकदार है वो नूने जमा या इजाफत के साथ हो, फला तजूजुल इजाफत इल्ला बिकिल्लतिन फी नूनिल जमाई, तो इजाफत जायज नहीं है इल्ला बिकिल्लतिन मगर कलील तौर पर, फी नूनिल जमाई नूने जमा में, नूने जमा में किल्लत के साथ इजाफत जायज है, किल्लत के साथ। नहव इशरू दिरहमिन, इशरू दिरहमिन, भाई इधर देखिए इशरू न दिरहमन क्या माना, 20 दिरहम, और इशरू दिरहमिन इसका भी वही माना 20 दिरहम। हां इजाफत में तख़फीफ भी आ गई, नूने जमा भी गिर गया और नीज वो मकसद भी हासिल हो गया, लेकिन ये निहायत कलील है अरबी जुबान में, अरबी जुबान में निहायत कलील आया है कि इस तरह वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि बाकी इजाफत वाली सूरत उसमें तो एक मुजाफिले पहले ही आ रहा है, तो जब लफ्ज एक चीज की तरफ मुजाफ हो तो दोबारा किसी और की तरफ उसकी इजाफत नहीं की जाती। तो कहते हैं अम्मा फिल इजाफती, बाकी इजाफत वाली सूरत में, फली अल्लाह तलजम इजाफतुल मुजाफी, ताकि कहीं लाजिम ना आए मुजाफ की इजाफत। भाई एक लफ्ज पहले ही मुजाफ है, आप दोबारा इसको किसी और की तरफ भी मुजाफ करना चाहते हैं तो ये तो इजाफत मुजाफ है और ये जायज नहीं है। वह अम्मा फी नूनिल जमई, जी अब फिर उसकी तफसील बयान करने लगे हैं, नूने जामा में आला सबीलिल किल्लत जायज है, आला सबीलिल किल्लत जायज है, लेकिन आम जायज नहीं, कसरत के साथ जायज नहीं। क्यों नहीं जायज? वजह बयान कर रहे हैं, कहते हैं वजह यह कि यह जो नूने जमा है इसमें इजाफत गैर तमीज की तरफ कसरत से इस्तेमाल होती है। यूं कहो ये जो नूने जमा वाली सूरत है इसमें गैर तमीज की तरफ भी इजाफत होती रहती है। किसकी तरफ? भाई माकबल वाला इसम ताम हो रहा है नूने जमा के साथ और इसकी इजाफत होती है गैर तमीज की तरफ आम तौर पर। तो अगर आप तमीज की तरफ भी इजाफत जायज करार दे देंगे तो अब सुनने वाले को पढ़ने वाले को पता नहीं चलेगा कि ये जो आगे मुजाफिले आ रहा है ये तमीज है या तमीज नहीं। तमीज है वो इसम जो ताम हो किसके जरिए? नूने जमा के जरिए। उसकी इजाफत गैर तमीज की तरफ भी होती रहती है। अगर आप तमीज की तरफ भी इजाफत जायज करार दे देंगे तो फिर वो तमीज की तरफ भी मुजाफ हो रहा है, गैर तमीज की तरफ भी मुजाफ हो रहा है, तो पढ़ने वाले या सुनने वाले को तो पता नहीं चलेगा कि इस वक्त जो आगे मुजाफिले है वो तमीज है या तमीज नहीं है। इसलिए वहां पर चूंकि तमीज का इल्तिबास लाजिम आता था गैर तमीज के साथ, इसलिए वहां जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं वह अम माफी नूनिल जमई, और बाकी नूने जमा के अंदर फली अन्नहु जाज़ा अन युज़ाफ़ इला गैरिल मुमय्यिज़, इसलिए कि जायज है कि उसकी इजाफत की जाए गैर मुमय्यिज की तरफ। मुमय्यिज वही तमीज का नाम है, उसमें इजाफत की जाती है गैर मुमय्यिज की तरफ। नहवु इशरी का व इशरी रमजान बिल इत्तेफाकी, यानी बिल इत्तेफाक गैर मुमय्यिज की तरफ इजाफत की जाती है। इशरी का, इशरी का, ये तो नहवु की वजह से इशरी का है, नहवु मुजाफ और इशरी का मुजाफ इले। इशरू का कह लें या इशरी का कह लें तो इशरूना का, तो ये इजाफत कर दी। और याद रखो ये इस सूरत में इजाफत जो होगी उस साहिब इसम की तरफ इजाफत होती है। किसकी तरफ? साहिब इसम। ये इशरूना ये है वो इसम और ये काफ जमीर है मुजाफोन इले, तो ये साहिब इसम है। क्या माना? इशरू का यानी आपके बीस मुखातब है ना, तो ये इशरून किसके हैं? मुखातब के हैं। ये इशरून किसके हैं? मुखातब के हैं। तो मुखातब कौन हुआ? साहिब इशरून हुआ। कौन? साहिब इशरून हुआ, या यूं कहें साहिब इसम हुआ जो माकबल जो इसकी तरह मुजाफ हो रहा है। यह दूसरी मिसाल में देख लो, जैसे गुलाम उजैदीन, गुलाम मुजाफ है और जैदीन मुजाफिल है, और इसमें देखो गुलाम की इजाफत किसकी तरफ हो रही है? साहिब मुजाफ की तरफ। ये जैद कौन है? ये साहिब गुलाम है, ये गुलाम वाला है, यानी ये गुलाम का मालिक है भाई। बात समझ में आ गई? तो जैसे गुलाम जैदीन का क्या माना? जैद का गुलाम, तो ये गुलाम की इजाफत है किसकी तरफ? साहिब गुलाम की तरफ, यानी साहिब मुजाफ की तरफ। तो इसी तरह इन के अंदर भी ये जो नूने जमा है इसके अंदर भी जो अक्सर इजाफत होती है वो साहिब मुजाफ की तरफ होती है। बात समझ में आ गई? इसी तरह इशरी रमजान, क्या माना? रमजान का बीसवां दिन, रमजान का बीसवां दिन। तो देखो ये रमजान कौन है? साहिब इशरीन है, ये बीसवें दिन वाला है। तो इशरी रमजान का क्या माना? रमजान का बीसवां दिन, और इशरी का इसका क्या माना? आपके बीस, इशरी का या इशरू का। और इसी तरह इशरी रमजाना या इशरू रमजान, हालत रफी में वो के साथ, नस्बी और जरी में या के साथ। तो अब देखो यहां इजाफत हो रही है इशरूना की, तमीज की तरफ नहीं, क्योंकि ये काफ जमीर तो तमीज नहीं है, तमीज तो नकिरा होती है, तो ये काफ जमीर तमीज नहीं है। इसी तरह इशरी रमजाना, इसके अंदर रमजान की तरफ इजाफत हो रही है। बात समझ में आ गई? और ये तमीज नहीं है। तो लिहाजा नूने जमा वाली सूरत में गैर तमीज की तरफ इजाफत होती रहती है, यानी गैर मुमय्यिज की तरफ इजाफत होती रहती है। तो अगर मुमय्यिज की तरफ भी इजाफत कर देंगे तो सुनने और पढ़ने वाले को पता नहीं चलेगा कि मुजाफिले इस वक्त मुमय्यिज है या मुमय्यिज नहीं, तो इल्तिबास की वजह से जायज नहीं। भाई देखिए तर्जमा, भाई कहते हैं वह अम्मा फी नून इल जमी और बाकी नून जमा के अंदर फली अन्नहु जाजा अन युजाफ इला गैर इल मुमय्यिज़ी, इसलिए क्योंकि जायज है कि इसकी इजाफत गैर मुमय्यिज़ की तरफ की जाए। नहु इशरी का व इशरी रमजान बिल इतफाकी, और ये बिल इतफाक जायज है। लिकसरत इल हाजत इलैही, इसलिए क्योंकि इसकी तरफ कसरत हाजत है, यानी इसकी तरफ हाजत कसरत से पेश आती रहती है, जरूरत पेश आती है, तो ये इसकी इजाफत गैर तमीज की तरफ करते हैं। फला उजीफ इलल मुमय्यिज़ी, अगर इस नूने जमा वाले इसम की इजाफत कर दी जाए मुमय्यिज़ की तरफ, लजिम इल्तिबासु, तो इल्तिबास लाजिम आएगा। लजिम इल्तिबासु फी बाज़ सूअरी, कैसे पढ़ेंगे? लजिमा जी, लजिमा शाबाद, लजिमा लिल्तिबासु। भाई देखिए, इल्तिबास ये बाबे इफ्तेआल है, हमजा शुरू का वसली है, ये गिर जाएगा, ये अलिफ लाम आ गया तो इल्तिबास का हमजा गिर गया, तो दोनों लाम साकिन है शुरू में, तो फिर पहले लाम को कसरा दे देंगे, अलिल्तिबास अलिल्तिबास, और फिर दर्जे इबारत में अलिफ लाम वाला हमजा वो भी गिर जाएगा, तो कैसे पढ़ेंगे? लजीमा लिल्तिबासु, तो तुलबा उमूमन कैसे पढ़ते हैं? लजीमल इल्तिबासु, तो ये लजीमा लिल्तिबासु नहीं, लजीमा लिल्तिबासु। तो फला उजीफ इलल मुमय्यिज़ी, अगर इसकी इजाफत कर दी जाए मुमय्यिज़ की तरफ, लजीम लिल्तिबासु, तो इल्तिबास लाजिम आएगा, फी बाज़ सूरी बाज़ सूरतों में, लिअन्नहु ला युअलमु मसलन इंदा इजाफत 20 इला रमजान, लिअन्नहु ला युअलमु, इसलिए क्योंकि मालूम नहीं हो सकेगा, मसलन मिसाल के तौर पर, इंदा इजाफत 20 इला रमजान, जिस वक्त के 20 की इजाफत की जाए रमजान की तरफ, तो उस वक्त पता ना चल सकेगा कि अन्नहु अरादा 20 रमजान, कि उसने रमजान के 20 दिन का इरादा किया है, और अरादा अल-यौम अल-20 मिन रमजान, या रमजान के 20वें दिन का इरादा किया है। भाई याद रखो, ये जो अदद है ना, अदद अदद, जब आप किसी चीज का मर्तबा बतलाना चाहें, मर्तबा बतलाना चाहें, तो अदद को फाइल वजन पर ले जाते हैं, फाइल, जैसे सलासतुन का क्या माना? तीन, लेकिन आप बतलाना चाहते हैं तीसरा, यानी तीसरे दर्जे वाला, तो क्या कहेंगे? सालिस, देखो फाइल वजन पर ले गए। अरबा का क्या माना? चार, लेकिन अगर आप बतलाना चाहते हैं चौथे दर्जे वाला, तो क्या कहेंगे? राबिया। खमसा का माना पांच, आप बतलाना चाहते हैं पांचवां, तो क्या कहेंगे? खामिस। तो अदद से जब आपने दर्जा बतलाना हो तो फिर उसको फाइल वजन पर ले जाते हैं, जबकि ये जो दहाइयां हैं, यानी ऐशुरूना सलासूना अरबाउना, ये यही दहाइयां अदद के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, और यही दहाइयां दर्जा बतलाने के लिए भी, यानी ऐशुरूना का माना 20 भी, और ऐशुरूना का माना 20वां भी, यानी 20वें दर्जे वाला, सलासूना का माना 30 भी, और सलासूना का माना 30वें दर्जे वाला भी। मसलन मैं कहना चाहता हूं तीसरा बाब, तो क्या कहूंगा? अल बाबुस सालिसु। मैं कहना चाहता हूं चौथा बाब, तो क्या कहूंगा? अल बाबुर राबिउ। और मैं कहना चाहता हूं 20वां बाब, तो क्या कहूंगा? अल बाबुल इशरून। उसी तरह इशरूना ले आऊंगा। तो मालूम हुआ ये जो दहाइयां हैं ये दर्जा बतलाने के लिए भी आती हैं और आदत के लिए भी आती हैं। तवज्जो है। तो यहां पर देखो, इन्होंने कहा इशरीना रमजाना, कि अगर इजाफत इशरीना की रमजान की तरफ कर दी जाए तो पता नहीं चलेगा कि इशरीना रमजान मुराद है और अराद अल यौम अल इशरीना मिन रमजान। देखो इशरीना रमजान का तर्जमा करें जरा, तमीज बनाए रमजान को। इधर देखिए, इशरून दिरहमन क्या माना होता था? 20 दिरहम। मालूम अब ये इशरून क्या है? वही दिरहम ही है। तो इशरून रमजान क्या माना? 20 दिन किसके हैं? रमजान ही के हैं। तो जब आप रमजान के 20 दिन बतलाना चाहें तो यूं कहेंगे इशरून रमजान, रमजान के 20 दिन। बात समझ में आ गई? तो आप रमजान के 20 दिन बतलाना चाहते हैं किसी मुअय्यन रमजान के, तो कैसे कहेंगे? इशरून रमजान, क्या माना? रमजान के 20 दिन। और जब आप रमजान का 20वां दिन यानी वो दर्जा बतलाना चाहते हैं दिन का रमजान में, तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप इजाफत के साथ कहेंगे ऐशरू रमजान, यानी क्या माना? रमजान का 20वां दिन, तो ऐशरू न रमजान बगैर इजाफत के कहें तो क्या माना? रमजान के 20 दिन, और ऐशरू रमजान इजाफत के साथ कहें तो क्या माना? रमजान का 20वां दिन। भाई फिर दोहराएं, ऐशरू न रमजान का क्या माना था? रमजान के 20 दिन, अगर इजाफत जायज करार दे दी जाए और इसमें भी कह दिया जाए ऐशरू रमजान, तो अब तो पता नहीं चलेगा कि रमजान के 20 दिन मुराद हैं या रमजान का 20वां दिन मुराद है। तमीज का इल्तिबास लाजिम आएगा किससे? गैर तमीज के साथ। इसलिए नूने जमा की सूरत में इजाफत आम जायज नहीं, आला सबील किल्लत जायज है। बात समझ में आ गई? यह माना है, कहते हैं फला उजी फल मुमैसी, अगर इजाफत कर दी जाए मुमैस की तरफ लजी मल इल्तिबास उफी बाज सूअरी, तो इल्तिबास लाजिम आएगा बाज सूरतों में। लिअन्नहु ला युअलमु मसलन, इसलिए क्योंकि मालूम नहीं हो सकेगा मिसाल के तौर पर इंद इजाफती इशरीन इला रमजान, जिस वक्त के इशरीन की इजाफत कर दी जाए रमजान की तरफ, कि अन्नहु अरादा इशरीन रमजान, कि इसने रमजान के 20 दिन का इरादा किया है, औ अरादल यौमल इशरीन मिन रमजान, या इसने रमजान में से 20वें दिन का इरादा किया है, तो फला युजाफु फी गैर सूरति लिल्तिबासी ऐजन, तो लिहाजा इल्तिबास के अलावा सूरतों के अंदर भी इजाफत नहीं की जाएगी। भाई बाज सूरतों में इल्तिबास लाजिम आता है, तमाम सूरतों में इल्तिबास नहीं, लेकिन जब बाज सूरतों के अंदर इल्तिबास की वजह से इजाफत जायज नहीं, तो नूने जमा की बाकी सूरतों के अंदर भी इजाफत जायज नहीं, ताकि सारे बाब का एक हुक्म हो जाए। सारे बाब का, भाई बाज जगह तो इल्तिबास लाजिम आता है, बाज जगह इल्तिबास लाजिम नहीं आता, तो अगर बाज जगह जायज करार ना दें और बाज जगह जायज करार दे दें, तो फिर तो सारे बाब का एक हुक्म नहीं रहेगा। लिहाजा जब बाज सूरतों में इल्तिबास लाजिम आया और वहां पर इजाफत को ममनू करार दिया गया, तो बाकी सारी जगह भी ममनू करार दे दिया गया जहां उन्हें जमा आ रहा हो, ताकि पूरे बाब का एक ही हुक्म हो जाए। ये माना है फला युजाफ फी गैर सूरति लिल्तिबासी ऐजन, तो लिहाजा जिन सूरतों में इल्तिबास न हो उनमें भी इजाफत नहीं की जाएगी, इल्ला अला किल्लतिन, मगर किल्लत पर यानी कलील तौर पर किया जाता है अरबी में, लियकून अल बाबू अकरब इलल इत्तिराद, ताकि ये बाब जो है इत्तिराद के ज्यादा करीब हो जाए। इत्तिराद का माना है सारे बाब का मुआफिक होना, सारे बाब को एक जैसा होना। तो कहना तो यूं चाहिए था साहिब जामी को, तर दन लील बाब, इस पूरे बाब का हुक्म एक जैसा करने के लिए इजाफत नहीं की जाएगी, लेकिन बता चुके हैं कि अला सबील किल्लत नूने जमा में भी इजाफत जायज है। तो लिहाजा जब अला सबील किल्लत जायज है, तो बाकी सब जगह आप ममनू भी करार दे दें, तो भी पूरे बाब का हुक्म तो एक जैसा न हुआ, पूरे बाब का हुक्म, तो कहते हैं हां बाकी जगह ममनू करार दे दिया गया, ताकि बाब जो है इत्तेराद के ज्यादा से ज्यादा करीब हो जाए। चंद जगह आला सबील किल्लत जायज है, बाकी पूरे बाब में जायज नहीं है, तो गोया बाब इत्तेराद के करीब हो गया। पूरा बाब तो एक जैसा ना हुआ, लेकिन इत्तेराद के करीब हो गया। ये माना है लियकून अल बाबू अकरब इलल इत्तिराद, ताकि बाब जो है इत्तिराद के ज्यादा से ज्यादा करीब हो जाए। बाज़ उलमा ने यहां इश्काल किया है, भाई इश्काल ये तवज्जो से, तमीज का नकेरा होना वाजिब है उलमाए बसरा के नजदीक, लिहाजा इशरीन रमजान, इसका क्या तर्जमा किया? रमजान के 20 दिन जब तमीज हो, इशरीन रमजान, क्या माना? इशरीन है मुमय्यज और रमजान है उससे तमीज, यानी किसी मुअय्यन रमजान के 20 दिन मुराद हैं, और रमजान इसको आपने गैर मुनसरिफ पढ़ा, क्यों? क्योंकि कोई मुअय्यन रमजान मुराद है, तो ये अलम भी हुआ और नीस इसमें अलिफ नून मजीदा तान भी है, तो ये गैर मुनसरिफ हुआ, तो मालूम हुआ किसी मुअय्यन रमजान के 20 दिन मुराद हैं। भाई तो बाज़ उलमा इश्काल करते हैं कि इशरीना रमजान नहीं होना चाहिए था, तनवीन आनी चाहिए थी इशरीना रमजानन, इशरीना रमजानन, इसलिए क्योंकि अगर आप कोई मुअय्यन रमजान मुराद लेते हैं फिर तो वो मुतअय्यन है, फिर तो ये आलम है, हालांकि तमीज जो है वो मारिफा नहीं आती, तमीज में वाजिब है कि वो नकेरा होनी चाहिए, लिहाजा यहां रमजान जो आया वो इससे कोई भी रमजान मुराद हो सकता है, किसी भी रमजान के 20 दिन। तो इशरीना रमजानन तनवीन के साथ क्या माना, रमजानन की तनवीन क्या बतला रही है कि मारिफा है नकेरा है, नकेरा है, तवज्जो है, मारिफा होता फिर तो इसने गैर मुनसरिफ बन जाना था, मारिफा भी है अलिफ नून मजीदा तान भी है, तो लिहाजा इसको अलम न बनाओ नकेरा बना दो कोई रमजान, तो माना क्या हुआ इशरीना रमजानन किसी रमजान के 20 दिन। तवज्जो है ये, जबकि बाजों ने फिर तर्जमा किया कि इशरीना रमजानन इस सूरत में माना होगा इशरीना रमजानन 20 रमजान, यानी रमजान के 20 महीने जो कितने सालों में आएंगे, हर साल में एक रमजान आता है तो 20 सालों में 20 रमजान आए हैं वो मुराद है इशरीना रमजानन तनवीन के साथ। इशरीना रमजानन जैसे इशरूना दिरहमन का क्या माना होता था 20 दिरहम, तो इशरूना रमजानन का क्या माना होगा 20 रमजान जो 20 सालों में आए हो। भाई बात समझ में आ गई, तो ये इश्काल किया बाजों ने कि रमजान अगर मुअय्यन रमजान के 20 दिन मुराद लेने हो तो फिर तो रमजान को तमीज नहीं बना सकते क्योंकि ये मारिफा है भाई। तो शायद फिर साहिब जामी ने ये मिसाल जो जिक्र की ये उलमाए कूफा के मजहब पर हो, उनके नजदीक तमीज का नकेरा होना वाजिब नहीं है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। वान गैर मिकदारिन जी, इसका आतफ माकबल में वो जो पीछे आया था फल अव्वलु अन मुफ्रदिन मिकदारिन गालिबन, वो जहां बड़ा पेचीदा एतराज जिक्र हुआ था तो ये उसी अन मुफ्रदिन मिकदारिन पर आतफ है। पहली किस्म इबहाम को दूर करती है अन मुफ्रदिन मिकदारिन, मुफ्रद मिकदार से भी, और आगे आया वह अन गैर मिकदारिन और गैर मिकदार से भी। भाई देखिए पहले मतन देखिए, कहते हैं वह अन गैर मिकदारिन और गैर मिकदार से भी पहली किस्म इबहाम को दूर करती है नहवु खातमुन हदीदन, जैसे खातमुन हदीदन। अब देखो खातम अंगूठी को कहते हैं, अब ये तो मिकदार नहीं है, मिकदार नहीं है, लेकिन इसकी जिन्स में इबहाम था कि अंगूठी किस चीज की है, सोने की है, चांदी की है, पीतल की है, लोहे की है, तो आगे हदीदन ने आकर इबहाम को दूर कर दिया कि यह अंगूठी लोहे की है। तो कहते हैं नहवु खातमुन हदीदन, तो ये हदीदन तमीज है मंसूब है। आगे मतन देखिए वल खफ्ज़ु अक्सरु, खफ्ज़ कहते हैं जर को, और इस किस्म के अंदर जर ज्यादा इस्तेमाल होता है जी। इस किस्म के अंदर भाई पहली किस्म जो है तमीज के वो इबहाम को दूर करती है मिकदार से भी और गैर मिकदार से भी, और इस गैर मिकदार में अक्सर जर इस्तेमाल होता है यानी इजाफत कर दी जाती है। खातमुन हदीदन नहीं कहते बल्कि खातमु हदीदिन कहते हैं। अब देखिए इसको शरा के साथ कहते हैं वहां गैर मिकदारिन अतफुन अला कौलिही अन मुफ्रदिन मिकदारिन, मुसन्निफ का ये कौल जो है अन गैर मिकदारिन ये मातूफ है मुसन्निफ के कौल अन मुफ्रदिन मिकदारिन पर, अइल अव्वलु कमा यरफाउल इबहाम अन मुफ्रदिन मिकदारिन, यानी तमीज की पहली किस्म जैसे वो इबहाम को दूर करती है मुफ्रद मिकदार से, कजालिका यरफाउहु अन मुफ्रदिन गैर मिकदारिन, इसी तरह तमीज की पहली किस्म इबहाम को दूर करती है मुफ्रद गैर मिकदार से भी। भाई गैर मिकदार से आपकी क्या मुराद है, बतला रहे हैं अईमा लैसा बिअददिन वला वज़्निन वला ज़िराअइन वला कैलिन वला मिक़यासिन, यानी गैर मिकदार से मुराद यह है कि वो चीज ना तो अदद हो ना वजन हो ना ज़िराअ हो ना कैल हो और ना मिक़यास हो। नहवु खातमुन हदीदन फ़इन्नल खातम मुबहमुन बेअतबारिल जिन्सी, इसलिए क्योंकि खातम जो है मुबहम है अपनी जिन्स के एतबार से, खातम कहने से अंगूठी कहने से उसकी जिन्स का पता नहीं चलता। कहते हैं फ़इन्नल खातम मुबहम उन बेअतबारिल जिन्सी, इसलिए क्योंकि खातम जो है मुबहम है अपनी जिन्स के एतबार से, ताम उन बि तनवीन, और ये लफ्ज ताम हो रहा है तनवीन के जरिए, फक तजा तमीजन, तो इसने तमीज का तकाजा किया। बात समझ में आ गई। फेल के अंदर भी जब फाइल आ जाए उसके बाद वो किसका तकाजा करता है, मफूल का, तो ये इसमें ताम भी जब तनवीन के जरिए ताम हो गया, अब इसने तमीज का तकाजा किया क्योंकि इसकी जिंस में इबहाम था, तो फिर तमीज को ये आगे नसब देता है। कहते हैं वल खफ्ज़ु अय खफ्ज़ु तमीज भी इजाफती गैर इल मिकदारी इलैही अक्सर, अय खफ्ज़ु तमीज, तमीज का जर जो है भी इजाफती गैर इल मिकदारी इलैही, गैर मिकदार की इसकी तरफ इजाफत करते हुए, ये जो तमीज का जर है अक्सर ये ज्यादा है, इस्तेमालन बेतबार इस्तेमाल के, भाई इसके अंदर अक्सर जो है इजाफत कर दी जाती है और इसमें जर पड़ते हैं तमीज पर। भाई क्या वजह है आपको बताएंगे कि वजह यह कि एक तो इजाफत की वजह से खिफत आ जाएगी, खातमु हदीदिन, देखो खातमुन से तनवीन गिर गई, तो एक वजह यह कि इबहाम भी दूर हो गया और तख़फीफ भी आ गई, इबहाम भी दूर हुआ, पता चल गया अंगूठी किस चीज की है, लोहे की है, और तख़फीफ भी आ गई, और नीस इस वजह से भी इसमें इजाफत ज्यादा है क्योंकि मुबहमात के अंदर असल मिकदारें हैं, मिकदारें इबहाम के अंदर असल हैं, मिकदारें चाहती हैं कि उनके बाद तमीज लाई जाए और उस तमीज को नसब दें, जबकि और चीजों के अंदर इबहाम उस दर्जे का नहीं, जब उस दर्जे का इबहाम नहीं तो यह इतना ज्यादा तकाजा नहीं करती कि तमीज को नसब दें, तो फिर यहां पर इजाफत की जाती है। मालूम हुआ जो मिकदारें हैं वो इबहाम की वजह से तमीज का तकाजा करती हैं ज्यादा, वो ज्यादा तकाजा करती हैं, और ये बाकी चीजें तमीज का इतना तकाजा नहीं करती, ये नहीं चाहती किसी इस्म को नसब देना, तो लिहाजा फिर यहां क्या कर दिया जाता है, इजाफत कर दी जाती है। कहते हैं लिहसूल गरजी माल खिफती, गरज के हासिल हो जाने की वजह से, माल खिफती साथ तखफीफ के, गरज क्या थी, रफ़ इबहाम वो भी हासिल हुआ और खिफत भी आ गई, वली कसूर गैर इल मिकदार, ये दूसरी वजह जिक्र कर रहे हैं कि जर क्यों पड़ते हैं, कहते हैं वली कसूर गैर इल मिकदार अन तलब तमीज़, कसूर का माना कमी, भाई कमी, इसलिए लिकसूर गैर इल मिकदारी, इसलिए क्योंकि गैर मिकदार में कमी होती है, अन तलब तमीज, तमीज तलब करने से, मिकदार तो तमीज को जरूर तलब करती है, इंदी रितलुन कहा तो रितलुन जरूर तमीज को तलब कर रहा है, और लिहाजा वो जैतन लाएंगे और वो उसको नसब देगा, लेकिन गैर मिकदार में तमीज का तकाजा इतना ज्यादा नहीं होता, ये इतना ज्यादा यूं कहें नसब नहीं देना चाहती, तो फिर जर ही पड़ देते हैं, इजाफत कर देते हैं। ये माना है लिकसूर गैर इल मिकदार अन तलब तमीज, इसलिए क्योंकि गैर मिकदार जो है वो नाकिस है तलब तमीज से, लिअन्न अल असल फिल मुबहमात अल मकादीर, इसलिए क्योंकि मुबहमात के अंदर असल जो है वो मिकदारें हैं, मिकदारें जो हैं वो मुबहमात में असल हैं, वो तमीज का तकाजा ज्यादा शिद्दत से करती हैं, वगैरुहा लैस बिहादिहि अल मसाबती, और मिकदारों के अलावा जो है वो इस दर्जे के नहीं, मसाबा का माना है दर्जा, दर्जा, वगैरह रूहा और मिकदारों के अलावा जो है लैस बिहादिहि अल मसाबती, वो इस दर्जे के नहीं है, वो तमीज का तकाजा इतनी शिद्दत से नहीं करते, तो वहां फिर इजाफत कर दी जाती है। बात समझ में आ गई, चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।